اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. پیدائش کے پہلے دن سے انسان اپنی راحت کا سامان پیدا کرتا ہے لاشعوری طور پر. بچے کو بھوک لگتی ہے تو لاشعوری طور پہ اپنی بھوک کا اظہار رو کے کرتا ہے لاشعوری طور پر. اسے پتہ ہے میں روؤں گا, میری اماں متوجہ ہوں گی اور مجھے کچھ غذا اور دودھ کچھ چیزیں مل جائیں گے. اسے کوئی تکلیف ہو وہ صرف روتا ہے, بچہ صرف روتا ہے, نہ بول سکتا ہے, نہ اپنی درد تکلیف کا اظہار کر سکتا ہے, نہ اپنے غم اور دکھ کو بتا سکتا ہے, کچھ بھی نہیں. بس ایک چیز ہے اس کے پاس, وہ ہے رونا. وہ روتا ہے. اور اگلی اس سے حیرت انگیز بات ہے کہ جب وہ بچہ باشعور ہو جاتا ہے, باشعور ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ اگر تھوڑی سی قربانی کرے پانی کی, تھوڑی سی قربانی کر لیں, ان کو روک دیں تو ایک منٹ, تھوڑی سی قربانی اگر کر دیں آپ, قربانی سے بیٹھیں گے تو شاید فائدہ زیادہ ہو, تکلیف تو نہیں ہوگی آپ کو, معاف کیجئے گا اگر تکلیف ہو تو. اور جب وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے, کچھ باشعور ہوتا ہے, کچھ سمجھ آتی ہے, عقل آتی ہے اور وہ بولنا شروع کر دیتا ہے, بولتا ہے, لیکن ایک اہم چیز جو پہلے دن سے اسے ملی تھی, رونا اور رو کے اپنی بات منوا لینا اور رو کے اپنی ہر چاہت کو پورا کرا لینا, یہ اس سے چھوٹ جاتا ہے. کائنات میں بہت سی چیزیں میرے رب کو پسند ہے, اپنی ثنا کے ساتھ, اپنی محبت کے ساتھ. میرے اللہ کو اپنی شان پسند ہے, اپنی تعریف پسند ہے, اپنی خوشامد پسند ہے, لیکن ایک اور چیز بھی پسند ہے کہ وہ رونا اللہ کو بہت پسند ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے تو میرے سامنے رو, تو پھر جتنا روتا جائے گا اتنا میں تیرے قریب آتا جاؤں گا. پھر بعض اوقات بندہ نہیں روتا, دنیا مل جاتی ہے اور دولت مل جاتی ہے اور چیزیں مل جاتی ہیں, اور دنیا دولت اور چیزوں کا نظام اس کے ارد گرد ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان اسی میں کھو جاتا ہے. پھر اللہ کوئی دکھ دے دیتا ہے, کوئی تکلیف دے دیتا ہے, پھر اللہ پاک کوئی ایسی مشکل دے دیتا ہے, پھر انسان روتا ہے. ایک صاحب میں گیا ان کی عیادت کرنے کے لیے, پہلے پٹواری تھے, پھر گرداور ہو گئے, پھر اس کے بعد تحصیلدار ہو گئے, پھر اللہ پاک نے بہت کچھ دیا دیا دیا, بہت بڑے مالدار ہو گئے. والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے دوست تھے, ان کا بھی ذمہ دارا تھا, والد صاحب کے باغ تھے ان کے بھی. میں اس سلسلے میں ان کی عیادت کرنے گیا, جب گیا تو مجھے دیکھتے ہی رو پڑے, بہت روئے اور میرا ہاتھ ہاتھ میں لے کے اپنے سینے سے لگایا, روئے اور مجھے جو ایک لفظ کہا وہ آج تک یاد ہے, وہ فوت ہو گئے ہیں. کہنے لگے میں وہ تھا کہ بڑی بڑی بیٹھ کے میں فیصلے کرتا تھا اور میرے فیصلے مانے جاتے تھے. اس کا بہت بڑا ڈیرا, بھینسیں بندی ہوئیں, قیمتی گائیں بندی ہوئیں, اعلی قسم کے نسل کے پرندے, اور بہت اس کا ایک نظام تھا, اس کی چہل پہل تھی, بہت اس کا نظام تھا. اور اس کو آج تک اس کی بات کو بات سمجھا گیا. بڑے بڑے فیصلے جو سپریم کورٹ میں نہیں ہوتے تھے, عدالتوں سے ناکام ہوتے تھے, اس کے دو لفظوں میں کامیاب ہو جاتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی تجھے میں نے یہ حصہ دے دیا, تجھے یہ دے دیا, تیرا یہ ہے, تیرا یہ ہے, بس ختم, بس حرف آخر. بیمار ہو گیا, تکلیف میں چلا گیا, پھر آہستہ آہستہ وہ دوست جو ملنے ملانے تھے وہ بھی چھوڑ گئے. پھر میں گیا تو میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے سے لگایا بہت دیر تک. کہنے لگا بہت دیر کے بعد آیا بھتیجا کہاں گیا تھا تو. मैंने कहा खैरियत तो आप तो ठीक ठाक हैं। कहने लगा मुझे तसल्लियां ना दे, ये सारी उम्र तो यही लोगों को तसल्लियां देता रहा हूं, मुझे तसल्लियां ना दे, मुझे तो इसका हल बता। मैंने कहा क्या बताऊं? कहा रोना नहीं रुकता। मैंने कहा इस रोने का हल खुद रोना है, इस रोने का हल रोना है। वो कैसे? मैंने कहा असल में सारी जिंदगी में मैंने उन्हें यह तो ना कहा कि आप रोए नहीं, रोए होंगे, अल्लाह पाक की हां कौन खलवतों में कैसे है, मैं कैसे कह सकता हूं। मैंने कहा सारी जिंदगी में आपका रोना कुछ तरह कम रहा और यह रोना अल्लाह के हां मतलूब है, और मेरा ख्याल ऐसा है कि अल्लाह कयामत के दिन आपको रुलाना नहीं चाहता। क्या हदीस में आता है, मफहूम है कि आदमी इतना रोएगा इतना रोएगा इतना रोएगा कि उसके आंसू खत्म हो जाएंगे और खून के आंसू शुरू हो जाएंगे। मैंने उनसे अर्ज किया कि मेरा जी चाहता है, मेरे मन में एक बात आ रही है कि अल्लाह क्यामत के दिन आपको रुलाना नहीं चाहता, और अल्लाह जल्ला शानू चाहता है कि बस मेरा बंदा यही रो ले, ज्यादा रो ले और ज्यादा रो ले। और जब मैं ये बात कर रहा था उनकी चीखें निकल गई और मुझे बार बार एक बात कह रहे थे, लोग मुझे आके तसल्लियां देते थे, ये लफ्ज लोगों ने मुझे आज तक नहीं कहा, मुझे कहते थे ना रो, मुझे तसल्लियां देते थे, लेकिन मुझे आज पता चला कि ये मेरे अल्लाह की मंशा है। अब मैं पहले गम समझ के रोता था, अब इश्क समझ के रोऊंगा। पहले गम समझ के रोता था, बीमारी का गम, मैं था, मेरी चौधराहट थी और मेरी ताकत थी और मेरे फैसले थे, मेरे इशारों पे बंदों की जमानतें हो जाती थी, मैं चला जाता था तो जज खड़ा हो जाता था, सुप्रीम कोर्ट के जज मेरे लिए, हाई कोर्ट के जज मेरे लिए खड़े हो जाते थे। आज मैं हूं माजूर हो गया हूं, निचला धड़ खत्म हो गया है, पेशाब पखाना मेरा खता हो रहा है। अब मुझे पता चला कि मेरा अल्लाह मुझसे यह चाहता है, जिंदगी की शाम हो गई है, मेरा अल्लाह कहता है रोता रोता आ, कोई बात नहीं, अभी जितना रोना है रो ले, ये हमें पसंद है, हमें ये पसंद नहीं कि तो आइंदा सारी जिंदगी में रोते रहे। बच्चेगाना अदाएं हमने छोड़ दी, कभी कभी हम बच्चे बन जाया करें, कभी कभी बच्चे बन जाया करें। वो कैसे? रो के अल्लाह से मनवाया करें। अम्मा अल्लाह तो लफ्जों का फर्क है, लेकिन अम्मा में शफकत जो नजर आती है और जो अल्लाह में शफकत नजर आती है वो जमीन और आसमान है। अम्मा की शफकत जमीन है, अल्लाह की शफकत आसमान है। 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला अल्लाह, अम्मा उसकी मोहब्बत तक पहुंच ही कैसे सकती है? अम्मा एक दफा नाराज हो जाए तो कहती है इसको माफ ना करना, मैं माफ नहीं करूंगी। फिर चलो मिन्नत करके मान लेते हैं, अम्मा मान जा। अम्मा फिर नाराज हो गई, फिर उसकी मिन्नत कुछ किया और मिन्नत करने के बाद जो है फिर नाराज हो गई। आखिर एक वक्त कहती है कि इसको मैंने कभी माफ नहीं करना, कभी माफ नहीं, कभी मैं इसको माफ नहीं करूंगी, हत्ता कि ये मेरे जनाजे में भी ना आए, मेरे जनाजे में भी ना। और सच्ची बात यह है कि जब बंदा एक दफा कहते हैं ना या अरहमर रहीमीन, सारे कहते हैं या अरहमर रहीमीन, एक दफा बंदा कहते हैं ना, अर्शे फौरन अल्लाह जल्ले शानों की रहमत मुतवज्जे होती है और अर्शों में बैठा मेरा रब कहता है कि मेरे बंदे मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। और यहां तक उसकी रहमत है, उसकी रहमत यहां तक है कि बंदा जब अल्लाह से रूठ के जाता है ना, अल्लाह को नाराज करके जाता है, तो किताबों में आता है कि अल्लाह मेरा उसके पीछे जाता है और फिर उसको आगे से होकर कहते हैं मेरे बंदे मुझसे बड़ा महबूब कहीं मिलेगा तुझे, तू मुझे छोड़ के जा रहा। और फिर साल 90 साल 80 साल सदी पूरा उस रब को नाराज किया और जी भर के नाराज किया। और फिर जब लौट के आता है तो उससे अगली हैरत अंगेज बात लिखी हुई है कि सातों आसमानों में चरागा होती है, फरिश्ते पूछते हैं या अल्लाह कैसी चरागा हो रही, फरमाए मेरा एक रूठा हुआ बंदा मेरे पास आ गया है। कैसा करीम है, कैसा करीम। कभी मैं बच्चे बन के उसको रो के मना लिया करें, कभी बच्चे बन के रो के मना लिया करें। आंसुओं की बड़ी कीमत है उसके, हाँ बड़ी कीमत है। अरे मैं एक बात बताऊं कराची वालों, एक बात है, मेरी बात अगर दीवानी हो मुझे दीवाना समझ के माफ कर देना, बाज वकात करीम लफ्जों से ज्यादा आंसू की लाज रख लेता है। ये सच है, सच है। एक साहब मेरे पास आए, मेरे यहां खिदमत करते थे, उसका मुआवजा लेते थे, फिर कहीं से मुआवजा ज्यादा मिला वहां चले गए, वो उसका मुआवजा भी खा गए, फिर मेरे पास आ गए, फिर हो गए, तीन चार दफा ऐसे हुआ। मैंने कहा नहीं, इसका मिजाज खराब हो जाएगा, अब ये आए तो इसको खिदमत में ना रखना। उसने इधर उधर बहुत कोशिश की, मुझसे मुलाकात भी ना हुई। एक दफा आया और उसने कुछ नहीं कहा, खामोश, उसके आंसू ऐसे टपक रहे हैं, टपक रहे हैं, और ऐसे बैठा सर नीचे करके रो रहा है। उसका दामन, मैं चुप करके बैठा हूं, उसका दामन आंसू से भीग रहा है, भीग रहा है। बहुत देर तक रोता रहा, फिर उसका रोना हिचकी बन गया, फिर उसकी सिसकियां शुरू हो गई। उसने कुछ नहीं कहा कि मुझे माफ कर दें, कुछ ही नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, और सिसकियां, हिचकियां और रोना, और उसका सारा चेहरा भर गया, उसका दामन भर गया। जैसे बाज औकात ना, बाज बंदे बहुत पान खाते हैं तो कपड़ा आगे सारा भीगा हुआ होता है, पान की भर गया, सब कुछ भर गया। रोते रोते ना, उसके रोने ने मुझ पत्थर दिल को बदल दिया। अच्छा, मैंने कहा उठ जा, जा जा। मुझे ऐसे देखने लगा कि किस अंदाज का आप जा कह रहे हैं, जाने का या रखने का। मैंने कहा जा, उससे जाके मिलने लिखवा ले, बस तुझे रख लिया, बस चुप करके वो उठ गया। और मैं बहुत ऐसे मुंह में उंगली लेके देर बैठा रहा। मैंने कहा तारिक, जिसके लिए तूने फैसला किया था कि कभी 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 और कभी इसको खिदमत पे नहीं रखूंगा, उसके आंसुओं ने तेरे दिल के पत्थर को हटा दिया और तेरे फैसलों को बदलवा दिया। तू बंदा, तेरी औकात क्या? यही औकात है कि पूड़ियां बांधने वाला हकीम है, यही तेरी औकात? और वो रब जो माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला, उसके सामने बैठ के सिसकियां और आंसू, और उसके सामने बैठ के अगर कोई रोए, क्या अल्लाह उसको लौटा देगा? क्या अल्लाह उसकी आंखों की आंसुओं की लाज नहीं रखेगा? और वो लाज रखने वाला कैसा है, कैसा है? सुने अगली बात, उससे भी अजीब है। कयामत के दिन एक दावा होगा, और दावा होगा कयामत के दिन, और अजीब दावा होगा। और दावा क्या होगा? दावा ये होगा कि आंख की पलकों में अटका हुआ एक आंसू आंख से निकला, नीचे नहीं गिरा, किसी ने देखा भी नहीं, छोटा सा आंसू जो पलक में अटक गया और वहीं अटक के खुश्क हो गया, वो आंसू क्यामत के दिन, मैं किताबों की बात अर्ज कर रहा हूं, लिखा है, क्यामत के दिन दावा करेगा, मौला तेरे खौफ से ये आंसू निकला था। और खुद तू तो फरमाए कि तेरे खौफ से निकलने वाला आंसू इसको जहन्नम की आग में कैसे डलवा सकता है? एला मैं इसका गवाह हूं, ये तेरे शौक से, तेरे खौफ से निकला था। आज ये जहन्नम के फैसले इसके हो चुके हैं, लेकिन मैं दावेदार हूं, एला अपनी रहमत से इसको जन्नत में भेज दे। छोटा सा आंसू, छोटा सा आंसू, अरे निकला ही नहीं अल्लाह वालों, वो तो निकला ही नहीं, वो तो गिरा ही नहीं, उसका तो किसी को खबर नहीं। और बाद में अपनी तबीयत को पता नहीं कि निकला था या नहीं निकला था। छोटा सा आंसू, छोटा सा फैसले बदलवा देता है, फैसले। मेरा बच्चा रो रहा था, मेरी बेटी ने ना गाड़ी उसकी छीन ली, छोटी सी गाड़ी, 6-7 साल की बेटी है, वो 2-3 साल बड़ा है, بیٹھا رو رہا تھا یوں کر کے آنکھوں میں, میری اہلیہ جو ہے نا اس کو منانے کے لیے. میں نے کہا چپ کر جا, رونے دے. کہ لیے کیوں؟ میں نے کہا میں اس کو دیکھوں یہ روتا کیسے ہے اور پھر میں بھی ایسے روؤں. کہ جس طرح تو ماں ہے اور تجھے احساس ہوا کہ میرا بیٹا رو رہا, اس کی گاڑی بیٹی نے چھین لی, اس کو کوئی میں بہلانے کے لیے ہیلا کروں نا, تو اس لیے اٹھ رہی تھی. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا مجھے اس کو رونے دے اور دیکھنے دے یہ کیسے روتا ہے. اس رونے نے تجھے اٹھایا. اس نے نہیں کہا مجھے گاڑی دے دے, وہ تو چپ کر کے وہاں کونے میں بیٹھا رو رہا نا. اس رونے نے تجھے اٹھایا کہ اس کو مناؤں. مدت سے کوئی شخص رلانے نہیں آیا, جلتی ہوئی آنکھوں کو بجانے نہیں آیا, تو نے اٹھایا اٹھ کے اس کو مناؤں اور اس کو کہوں تسلیاں دوں, گاڑی لے کے دوں یا کوئی متبادل دوں. یہی تھا نا, میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے رونے نے ماں کو تو تڑپا دیا, رب کو نہیں تڑپائے گا؟ رب کی رحمت کو نہیں تڑپائے گا؟ بس یہ چیز ہم سے چلی گئی, ہماری آنکھیں بانج ہو گئی, ہماری آنکھیں بانج ہو گئی. میں پرسوں ہفتے والے دن, کل ہفتہ تھا نا, کل میں راوی سے گزر رہا تھا. میں جگہ ہے آگے درود محل وہاں تعمیر کی, میں وہاں جا رہا تھا, راوی کو دیکھا تھوڑا سا بہ رہا. اچانک میرے اندر کی ایک آہ نکلی, ہائے ہمارے گناہ راوی کو کھا گئے اور راوی پانچ ہو گیا. گناہوں نے دریاؤں کو خوش کر دیا, ہماری آنکھیں پانچ ہو گئی, رونا چھوڑ دیا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بندہ آیا, کہنے لگا کہ ایک کیس لے آیا ہوں, ساری دنیا ناکام ہو گئی ہے, آپ کے پاس شاید آپ اس کا حل کر دیں. کیس یہ ہے کہ ایک فقیر میرے پاس منگتا آتا تھا, میرے پاس پھر کچھ عرصے کے بعد آتے آتے اس کا میرا تعلق بن گیا, میرے پاس اس نے پیسے جمع رکھنا شروع کر دیے. بہت سارے اس کے پیسے تھے, جمع کرتا تھا پھر لے جاتا تھا, جمع کرتا تھا پھر لے جاتا تھا, چھوٹے چھوٹی ریس گاڑی کو بڑے نوٹوں میں تبدیل کرا لیتا تھا, لے جاتا تھا بڑے سکوں میں, نوٹ تو ہوتے نہیں تھے, بڑے سکے ہوتے تھے چاندی کے. تو کرتے کرتے دو تین دن ہوئے اور روز آتا تھا, مجھے اس سے انس ہو گیا, اسے مجھ سے ہو گیا, دوست بن گئے. وہ نہ آیا اور میں نے جو ہے آخر کار اس کا پتہ کیا. کرتے کراتے ایک پرانے کھنڈر میں وہ پڑا تھا, سسکیوں میں سانسوں میں تھا, موت و یاد کی کشمکش تھی. میں نے جا کے اس کو پکارا, اس نے آنکھ کھولی, پہچان لیا. کہنے لگے مجھے تیرا انتظار تھا, مجھے کچھ جانتا نہیں, میں اس کھنڈر میں رہتا ہوں, دیکھ فلاں کونے میں میرا مال دفن ہے, ایک مجھ سے وعدہ کر, مجھے اس مال سے بہت محبت ہے, جب میں مروں گا میرا مال میرے ساتھ دفن کر دینا. کہنے لگے مجھ سے محبت تھی, میں نے اس کی وصیت قبول کی اور اس نے ہچکیاں لیں, سانسیں لیں اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. خیر اس کی جو تجہیز و تکفین, جو کفن دفن سلسلہ سارا کیا, چپکے سے میں نے اس کا مال بھی اس کے اندر دفن کر دیا. تلک الایام و نداولہا بین الناس, دن رات گزرتے گئے, مجھ پہ فقر و فاقہ آ گیا, غربت تنگ دستی آ گئی, میں روٹی کا اور پائی پائی کا محتاج ہو گیا. ایک پل میں خیال آیا کئی سالوں کے بعد کہ وہ جو دولت اس کی میں نے ساتھ دفن کی تھی اس کے تو کسی کام کی ہے نہیں, تو کیوں نہ جا کے اس کو میں نکال لوں. پھر مجھے اندر ایک تسلی ہوئی, رات کی تنہائیوں میں گیا, اس کی قبر کھودی, اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ اور وہ سارے سکے چاندی والے اس کے پورے جسم پہ پھیلے ہوئے تھے اور اس کے اندر سے ایک لائٹیں نکل رہی تھیں. مجھے احساس ہوا کہ شاید یہ نور ہے, کیا ہے. مجھے ایک دولت کی ہرس تھی, چیز کی ہوس تھی اور اس کی طلب تھی. میں نے اس پہ ہاتھ ڈالا ایک سکے پہ تو میری چیخ نکل گئی, وہ تو آگ بنا ہوا تھا اور آگ کے اس کے اندر انگارے جیسے ایک روشنی دیتے ہیں, وہ روشنی تھی. بس اس کے بعد میں نے جس طرح اس کی قبر کو بند کیا اور بس چیختا چلاتا ہوا, اب اس کو میں پانی میں رکھتا ہوں تو ٹھیک, پانی سے نکلتا ہوں دن رات تو میری آگ ہی آگ ہے. آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ شیخ کا استنباط دیکھے، کمال دیکھے. فرمایا ہاں اس کا حل ہے، اللہ پاک کی رحمت بہت قریب ہے. جن آنسوں سے جہنم کی آگ بجھ سکتی ہے، ان آنسوں سے یہ قبر کی آگ، وہ بھی جہنم کی آگ ہی کا تو حصہ ہے، بجھ سکتی ہے. اللہ کے خوف سے رو، اللہ کے خوف سے رو، اور جو آنسو گرے گرنے نہ دے، انہیں انگلیوں کو انہیں ہاتھوں کو لگا، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور وہ رویا اور اس نے وہ آنسو لگائے اور اس کا مسئلہ حل ہو گیا. آنسو کی بات چلی تو میں ایک بات اور کہوں، کبھی اپنے آنسو گرنے نہ دینا. یہ میرا تجربہ ہے، پھر میں نے ہزاروں کو بتایا ان کا تجربہ ہے. کبھی اپنے آنسو کو گرنے دینا، کوئی تنہائی کے آنسو، کوئی شوق کے آنسو، کوئی خوف کے آنسو، حتیٰ کہ کسی کی موت کے آنسو، دکھ کے آنسو، تکلیف کے آنسو. کوئی عزیز فوت ہو گیا، اس کی قبر پہ، اس کی موت پہ، اس کی میت پہ گئے، وہ آنسو کبھی ضائع نہ کرنا. جہاں تکلیف ہو نا، جہاں دکھ ہو، اور جہاں کوئی بیماری ہو. ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کو شوگر تھی اور شوگر بگڑ گئی، چھوٹی انگلی پاؤں کی جو ہے وہ گل گئی، وہ ڈاکٹروں نے کاٹ دیا، وہ ٹھیک ہو گیا زخم، انگلی انگلی کے ساتھ تھوڑا سا گوشت کا حصہ، اس کے بعد اگلا حصہ پھر وہ ہرا ہو گیا. مجھے کہنے لگی ڈاکٹر کہتے ہیں آدھا پاؤں کاٹنا پڑے گا، کیا کروں، پریشان. میں نے کہا انشاءاللہ نہیں کاٹنا پڑے گا، پہلے یقین کر کے انشاءاللہ نہیں کاٹنا پڑے گا، اور تین کام کر لے تیرا زخم انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. پہلا کام یہ کر کے اللہ کے لیے رو، اور اس کے آنسو جو ہے نا آنکھوں سے انگلی سے لگا لگا کے اس زخم کے اوپر لگا، پٹی باندھی ہوئی ہے پٹی کے اوپر لگا لگا، ایک تو آنسو لگا، تیرا زخم ٹھیک ہو جائے گا، آنسو لگا. اور دوسرا، مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کر، کسی مسجد کا پانی کا بل دے دے. ہمارے ہاں تو لاہور میں واسا ہے، اس کا بل آتا ہے پانی کا، آپ کے ہاں پتہ نہیں کیا ترتیب ہے، کہیں موٹر لگی ہو اس کا پانی کا بجلی کا بل دے دے، پانی کی ترتیب بنا لے کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی ایسی جگہ جہاں پانی کی ترتیب ہو، یہ کر دے دو چیزیں. اور تیسری چیز، ایک کام کر، کوئی بوڑھا ہو جو 80 سال سے اوپر والا ہو، اس کو تلاش کر اور اس سے جا کے دعا کرا دے، تیرا کام ہو جائے گا. اس سے جا کے دعا کر، آپ یقین جانے اس نے یہ تین کام کیے. آج بھی وہ مجھے ملتا ہے، وہ بندہ، اس کی ایک چھوٹی انگلی کٹی ہوئی ہے، مجھے کہتے ہیں مجھے یہ چھوٹی انگلی دیکھ کے اپنے جسم کو نامکمل محسوس کرتا ہوں، میرا جسم مکمل تھا، میری ماں نے تو مجھے انگلی کے ساتھ جانا تھا نا، میری اما نے، میں اب انگلی کے بغیر چل رہا ہوں، میری چال میں وہ طاقت نہیں، وہ قوت نہیں جو ہونی چاہیے. اب مجھے پہلے کیوں نہیں ملے تھے، اور پہلے مجھے آپ نے یہ چیزیں کیوں نہیں بتائی تھی؟ آنسو کی قیمت ہے، چھوٹا سا آنسو جو آنکھ میں ابھی اٹک جائے، وہ تو اللہ کے ہاں قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچوائے، دوزخ کی آگ سے بچوائے، اور بڑی بڑی تکلیفوں اور مصیبتوں سے بچائے، چھوٹا سا آنسو. اللہ والو، ایک آنسو کی رم جھم ہے، ایک آنسو کا سامن بادو ہے، ایک آنسو کی برسات ہے، اور اللہ کے لیے آنسو ہے، اور پیار میں آنسو ہے، اللہ کی محبت میں، اور مدینے والی کے عشق میں، اور اللہ کے حبیب کے عشق میں. ان آنسو کی اللہ کے ہاں کیا قیمت ہوگی، سوچیں تو سے. میں اپنی بات کو، ایک بات کو بار بار دہرا رہا ہوں، کبھی کبھی بچے بن جایا کریں، اللہ والو کبھی کبھی بچے بن جایا کریں. ہم سب بچے ہر چیز رو کے منوا لیتے ہیں، رو کے منوا لیتے ہیں. مائیں اپنے کام میں لگی ہوتی ہیں، اپنے کام میں لگی ہوتی ہیں، بچہ خاموش سو رہا، انہیں کہا سو رہا، یوں بچہ رویا، یوں بچہ رویا، اور ماں کا کام چھوٹا، اور بچے کی ضرورت پوری ہوئی. اور اس سے بھی اگلی بات بتاؤں، آپ میری اس بات کی تصدیق کریں گے، اس سے بھی اگلی بات بتاؤں. آپ نے ایک چیز محسوس کی ہوگی،
यह चीज मां ज्यादा महसूस करती हैं। मां एक चीज महसूस की होगी, हमारे यहां हमारी एक रिश्तेदार खातून थी, वो बैठी अम्मा रहमतुल्लाह से बातें कर रही थी, अचानक उठी, हाँ मेरा बच्चा जाग गया, रो रहा है, उनका साथ तीसरा चौथा घर था, मेरा दूध बहना शुरू हो गया है। मां का दूध बहना शुरू हो जाता है, मां का दूध बहना शुरू हो जाता है, टपकना शुरू हो जाता है, मेरा दूध टपकना बहना शुरू हो गया, मेरा बच्चा उठा डोया। मैं छोटा सा था, मैंने कहा, मुझे ये बात अजीब लगी, ना समझता और हूं, मैं पीछे से पीछे चला गया, ओ दरवाजे तक आवाज बच्चे के रोने की, माई एकदम दरवाजा खटखटा रही है जोर जोर से, गुस्से से, उसका जी ना चाहे मैं दरवाजा तोड़ दूं। मैं पीछे गया, बच्चे को सीने से लगाया, मैं एक तरफ हुआ, यूं बच्चे को दूध पिलाया, ओ पल में बच्चा चुप हो गया। रो तो सही, रहमत आएगी, दरवाजे तोड़ेगी, तुझे रहमत कर शाने करीमी की अपने सीने से लगाएगी और तेरी सिसकियां यूं ठंडी हो जाएंगी और तेरे दिल की तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी। हाय माओं से मोहब्बत सीख लें और बच्चों से मांगना सीख लें कि बच्चे मांगते कैसे हैं, बच्चे मांगते कैसे हैं। इन आंसुओं की बड़ी कीमत है अल्लाह वालों, इन आंसुओं की बड़ी कीमत है। वो एक शख्स खड़ा था रोजा यात्र के सामने, मवाजा शरीफ के सामने, सिसकियां उसकी हिचकियां बंधी हुई थी। तो एक बंदा वहां का आया, उसने उसको झंझोड़ के कहा, ये को रोने की जगह है? आया कहने लगा, इस जगह पे तो खजूर का तना भी रो पड़ा था। हाँ कि सरवर कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मिंबर बनाया, ओहो, और वो मिंबर मजमा ज्यादा हो गया, और इब्राहिम रजी अल्लाह के नाम के एक शख्स थे जिन्होंने वो मिंबर बनाया, और सिसकियां थी। ये वाक्य आपने कई दफा मिंबर और मेहराब से सुना हुआ है, सिसकियां थी, और मेरे आका ने उसे सीने अत्थर से लगाया और उसे बिशारतें दी, और फिर जाके वो चुप हुआ। मैंने उसको कहा, मैंने कहा खजूर के तने से नीचे तो ना जाओ, तो कहते ये रोने की जगह है, और कौन सी रोने की जगह होगी, और जगह बताओ कौन सी होगी। ख्यालो कफी आईनी व जिक्रो कफी फम्मी व मसवा कफी कल्बी फ़ाइन तुगी। कभी कभी अपनी आंसू को सावन दिया करे। यहां तो कराची में सावन बरसे ना बरसे, पंजाब में तो बड़ा बरसता है। कभी अपनी आंखों को दे, आंखें बांझ हो गई हैं, बड़े मसाइल हल हो जाते हैं, बड़ी मुश्किलें दूर हो जाती हैं, बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं, ना मुमकिन मुमकिन, ना मुमकिन मुमकिन, ना मुमकिन मुमकिन, इन रोने से, इन आंसुओं से, इस अंदर की आह से, इस अंदर की तड़प से बहुत कुछ मिल जाता है अल्लाह वालों, बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ मिल जाता। कोई तन्हाइयां कि या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते, याद तेरी दिल नशे होती। मैं सहराओं में जाता हूं, अब तो मैंने सहराओं की तस्वीरें भी नेट पे भेजना शुरू कर दी हैं, आपने देखी होंगी, आखिरी इंडिया का बॉर्डर सहरा, रेती रेत। अभी मैं पिछले हफ्ते मैंने सफर किया, गाड़ी के मीटर पे मैंने कहा कितने, 168 किलोमीटर के बाद कोई इंसान नजर आया, सहरा ही सहरा है, गाड़ी भूल गए तो बंदा गया,
गिद्धे ऊपर फिर रही होती हैं, अभी तो सांस ही नहीं निकलती, वो नोचना शुरू कर देती हैं। वहां तन्हाई में बैठ के रोना, और आपको सहरा नहीं मिलता तो घर भी सहरा बना ले, घर के किसी कोने में अल्लाह से बैठ के बातें किया करें। कभी कभी नहीं, अल्लाह से बैठ के बातें किया करें, अल्लाह को अपने दुखड़े सुनाए, वो जानते हैं करीम। ये जो हम दुआएं मांगते हैं, या अल्लाह ये दे, क्या मेरा रब नहीं जानता? बोले, क्या मेरा रब नहीं जानता? क्या अल्लाह को खबर नहीं है? क्या अल्लाह नहीं जानता? वो जानता है, वो खूब जाने। अरे वो तो वो जाने जो आने वाला है, वमा खल्फहुम अहदीहिम वमा खल्फ, वो तो सब जाने। लेकिन वो कहता है मुझे सुनाओ। अल्लाह के पास को ना बैठ के अपने दुखड़े सुनाया करें, अल्लाह से बातें किया करें कि मौला क्या सारी जिंदगी इन्हीं नाफरमानियों में और उससे वादे तोड़ने में गुजर जाएगी? मैं तुझे कैसे मुंह दिखाऊंगा? एक बुजुर्ग थे, दुआ करने के बाद अपने दोनों हाथ दुआ पे मुंह पे फेर के अपने मुंह पे हाथ रख लेते थे। तो किसी ने पूछा, हजरत ऐसा क्यों करते हैं? और मैं मुझे खतरा है कि मेरे मुंह पे दुआ मार ना दी जाए। अल्लाह से बातें किया करें, अल्लाह को अपने गम सुनाया करें। फिर कैफियत बनती है, तन्हाई हो, अल्लाह हो और मेरा गम हो और मेरे टूटे फूटे लफ्ज हो। अपनी बोली हिंदी है या सिंधी कोई भी है, अपनी बोली में अल्लाह से बातें करें, अपनी जुबान में अल्लाह से बातें करें और फिर अल्लाह के साथ बैठ के अपने दुखड़े शेयर करें और फिर कैफियत बनेंगी। फिर कैफियत के बाद सिसकियां और सिसकियों के बाद आहें और आहों के बाद फिर और बहुत कुछ होगा। और फिर जोर जोर से रोना आए तो रोए और अल्लाह से बैठ के बातें करें कि मौला बहुत दुनिया फिर लिया, बहुत थक गया हूं, तेरे पास पहले आना था, देर करके आया हूं। सुना है तू देर से आने वाले को कबूल कर लेता है। मौला मेरे दुख बड़े लंबे, रातें बड़ी लंबी हो गई है। अपने लिए मांगे, गैरों के लिए मांगे, काफरों के लिए मांगे, यहूदियों के लिए मांगे, ईसाइयों के लिए मांगे, शिया के लिए मांगे, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस के लिए मांगे, सारी उम्मत के लिए मांगे। उम्मत बेवारिस हो गई है, जात के लिए मांगने वाले सारे हैं, मेरे मदीने वाले की उम्मत के लिए मांगने वाले मैं नहीं कहता नहीं है, कम बहुत कम है। मदीने वाले की उम्मत के लिए मांगे, इन हुक्मरानों के लिए मांगे, इन गरीबों के लिए, इन अमीरों के लिए मांगे। मुझे नींद नहीं आ रही थी, कोई मरीज बाजों का आ जाता है, दुखी आ रहा, कोई खत आ जाता है, नींद उड़ जाती है, नींद नहीं आ रही थी। तो मैं मुसलसल दरूद पाक पढ़ रहा था, अमाल कर रहा था, फिर मेरे अंदर एक ख्याल आया। मैं कह या अल्लाह, पूरी दुनिया में जिस जिसको नींद नहीं आ रही, गमों का मारा हुआ, दर्दों का मारा हुआ, तड़पता हुआ, अल्लाह मैं सबकी नियत करता हूं मुझे भी अपने गैब के खजाने से नींद दे दे, उनको भी नींद दे दे। सच्ची बात है, मैंने ये नियत की ही दी, मुझे पता नहीं फिर मेरा दरूद का कितना हिस्सा मुकम्मल हुआ, मुझे नींद आ गई। सिर्फ ये नियत की, ए अल्लाह जितने भी दुखी आ रहे हैं दुनिया में, दर्दों के मारे हुए हैं, उनका दर्द सीने में है और उन्हें नींद नहीं आ रही, अल्लाह उन्हें भी नींद अता कर दे, अल्लाह भी उनकी, अल्लाह तो उनके भी दुख दूर कर दे। कोई तो रोने वाला हो अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी अम्मा के लिए, अपनी जमीन सनत तिजारत नौकरी के लिए रोने वाले सारे हैं, कोई मदीने वाले की उम्मत के लिए रोने वाला हो। इन आंसुओं की बड़ी कीमत है अल्लाह वालों, इन आंसुओं की बड़ी कीमत है। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं, एक पत्थर को देखा, रो रहा हो तो क्यों रो रहा? और मैंने कुरान पाक, एक उम्मत पे आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला सल्लम की, और उसमें एक लफ्ज लिखा हुआ है, वकूदुहन्नास वल हिजारा, ये उस दिन इंसान और पत्थर जहन्नुम का ईंधन फ्यूल बनेंगे। और यह बात हकीकत है, जमीन के नीचे से जो पत्थरी कोयला निकलता है और आपके बट्ठों बट्ठियों में सनतों में जलता है, यह पत्थर ही तो है। अल्लाह ने दिखा दिया कि जमीन के नीचे सारा बर्निंग मटेरियल, जमीन के नीचे जितना भी जाते जाए जलने वाला निजाम है। और इस्लाम कहता है, किताबों में लिखा है सिज्जीन नीचे है, और किताबों में लिखा है जन्नत यानी इल्लीन ऊपर है, और नीचे सौरा जलने वाला निजाम है। आपका पेट्रोलियम, आपकी यह तारकोल छड़कों वाली, आपका ये कैरोसिन ऑयल, आपकी ये वैजलीन, ये सारी चीजें जलने वाला सौरा निजाम, डीजल और सब कुछ, ये सब नीचे से निकलता है। तो उसको तसल्लियां दी, उसके लिए दुआ कर दी। अच्छा, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह तुझे जलने से बचा देगा, मैं दुआ करता हूं, उसके लिए दुआ दी। कुछ अरसे के बाद आए, नहीं दुआ दी और उसे खुशखबरी सुना दी कि जे अल्लाह पाक ने तुझे माफ कर दिया, अल्लाह तुझे जहन्नम की आग में नहीं जलाएगा। कुछ अरसे के बाद आए तो फिर वो रो रहा। अब क्यों रो रहा? क्या कमाल की बात, पत्थर ने कही हम कहीं पत्थर तो नहीं बन गए, पत्थर तो ये था, हम पत्थर से नीचे तो ना जाए ना। पत्थर क्या कहने लगा? पत्थर कहने लगा अल्लाह के नबी, मैं जिस रोने की वजह से जहन्नम से हटा हूं, फिर उस रोने को कैसे छोड़ दूं? इस रोने की वजह से तो जहन्नम की आग से निकला था और मेरी खुलासी हुई थी, आज उस रोने को मैं कैसे छोड़ दूं? ये रोना हमारी जरूरत है, ये रोना हमारी मोहताजी है। और इसका एक एक आंसू महफूज रखिएगा, जख्म खराब हो, कहीं घुटनों का दर्द हो, दिल के मैंने कई वाल खुलवाए आंसुओं से। आप अपनी अकल से बताएं, पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, जिन आंसुओं से मरने के बाद का सारा निजाम बन जाए, यानी जहन्नम से खुलासी तो समझ लो मरने के बाद सारा निजाम बन गया ना, जिन आंसुओं से जहन्नम की खुलासी से मुराद मरने का सारा निजाम क्लियर। ये जो जहाज में आते हैं ना, वो बताते हैं, वो कहते हैं जी पहले इतनी बड़ी टिकट, इतने बड़े पैसे, इतनी बड़ी टिकट, फिर कागज, फिर आखिर में बताते हैं जहाज में जब कोई बंदा बैठता है, छोटा सा कागज होता है बोर्डिंग कार्ड के साथ का, वो दे देते हैं, कहते जाओ। सारे मराहल तय करने के बाद छोटे से कागज के ऊपर सीट नंबर या कुछ जरूरी चीजें, ये बदल जाओ। सारा खटिया वटिया और सारी जिंदगी का निचोड़ तो बख्शिश है ना, यही तो है ना, यही है। और जिन आंसुओं से यह निजाम सारा संवर जाए, बोलो उन आंसुओं से मरने से पहले का निजाम नहीं संवर सकता? चलो दूसरे लफ्जों में बताएं, जिन आंसुओं से मरने के बाद की जिंदगी, हजार साल की, लाख साल की, दो लाख साल की, करोड़ साल की, कोई खबर नहीं मुझे, आपको अबदन अबदा मेरे अल्लाह के इल्म में है, वो बन जाए तो मरने से पहले की 60-70 साल 80 साल की जिंदगी का निजाम नहीं बन सकता? बोले, दिल के वाल मैंने कहा कपड़े के ऊपर लगा दो, कोई कमीज शर्ट हटाने की जरूरत नहीं है, आंसू कपड़े के ऊपर लगा के ऐसे कर दो, तसव्वुर करो कि अल्लाह इन आंसुओं से दिल के वाल खोल दे। हुआ ये, हमारे सामने घर के सामने गली में ना, ये क्यूने एक कलर वगैरह का एक गैर मुल्की इदारा है, क्यूने वहां की डीलरशिप है, हमारे पड़ोसी है, नेक पड़ोसी है, उनका एक ड्राइवर मेरे पास ऐसे मैं चलते हुए जा रहा था, कहने लगे जी बात सुनेंगे। मैंने कहा जी माफ करना, क्योंकि गली के हर कोने में कोई बंदा खड़ा होता है, मेरे ऊपर फतवे भी बहुत लगते हैं, मुतकब्बिर है, प्राउड है, पता नहीं क्या है, मैं सबके सामने हाथ बांध रहा हूं, मैं आपकी खिदमत नहीं कर सकता, अभी भी बहुत से लोग मिलना चाहते हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या आपसे अपना गम बताऊं। एक बंदा मुझे कहने लगा मेरा गम सुने, मैंने कहा मेरा भी कुछ सुनने वाला है, सारे मुझे ही सुना के जाते हो, मेरा तो सुने, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। कहता तारिक तो अपना, उस दिन एक बंदा आया, कहने लगी जी मैं आया हूं आपका कोई गम नहीं सुनता, मैं आपका गम सुनने आया हूं, क्या हाल है आप? मैं ठीक हूं। फिर अपनी कहानी शुरू हो गया। उन्होंने कहा जी आपका दस में एक बात सुनी थी, आपकी तो सुनता कोई नहीं, मैं आपका हाल सुनने आऊं, क्या हाल है आप ठीक है? खैर, मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर कहने लगे जी ये मसला है। तो राह चलते हुए फिर बात एक और इसमें याद आया, कराची में कितने पंजाब से हकीम आते हैं और आते हैं, कितनी इश्तिहारबाजी होती है, क्या पैसे किसी को काटते? मेरे एक जानने वाले थे, मैं कराची में जब कुछ अरसा मैंने क्लिनिक किया तो रोजनामा खबरें के वो रेजिडेंट एडिटर थे, मुझे कहने लगे जी हम आपका इंटरव्यू नहीं करेंगे। मैंने आज तक किसी चैनल को, किसी अखबार को इंटरव्यू नहीं दिया, बहुत चैनल वाले आते हैं, बहुत कुछ भी होता है। कहने लगे हमारे यहां आए, मैं वापसी मेरी सवारी का, मैंने वहां से गुजरते हुए वहां गया, मुझे कहने लगे आप दीवाने हैं, अगर मैं आपको बेवकूफ कहूं तो नाराज तो नहीं होंगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मेरे पास तो, मेरे ऊपर अलकाबात और फतवों की एक लिस्ट है, तो ये तो छोटा सा जूद हजम लफ्ज है मेरे लिए। मुझे कहने लगे अब मेरी तरफ देखिएगा, मुझे कहने लगे कराची में नोट हवाओं में है, ऐसे कोई बंदा लेने वाला हो, ऐसे ना, ऐसे पकड़, कोई पकड़ने वाला हो, यहां मरीज क्लिनिक आपकी शोहरत। मैंने कहा मैंने अल्लाह से एक मामला किया है, ये मेरे और अल्लाह के दरमियान है, मेरे और अल्लाह के दरमियान है, कि या अल्लाह मैं मरीज की सुनूं, उसको देखूं तसल्ली से, उसकी सुन के फिर उसके मुआफिक दवा लिखूं, फिर ठीक हो ना हो अल्लाह तेरी तकदीर का मामला है। मैं सुन ही ना सकूं। जिन लोगों के पास नंबर था कराची का, वो बेचारे कहते हैं जो हर बंदा, हजारों लोग, औरतें और मर्द मिलना चाहते हैं, मैं किससे मिलूं? मेरा जमीर नहीं कहता कि मैं बिन सुने कुछ करे ऐसे लिखता जाऊं पर्चियां और यूं नोट का बैग उठा के यूं निकल जाऊं। ये मेरे और अल्लाह का मामला है, मैं आपसे इसकी इतना तस्दीक लेता हूं, ना मोहरें लगवाता हूं, ये मेरे और अल्लाह का मामला है। पैसे किसी को अच्छे, बहरहाल अच्छे लगते हैं, नोट थोड़े हो या ज्यादा हो अच्छे लगते हैं। मैंने उसको कहा, मुझे कहने लगा हाँ, वो गली में मिला, उनका ड्राइवर था, उनके पास है कैरी डब्बे, वो पूरे लाहौर शहर में क्यूने का माल सप्लाई करते हैं, कैरी डब्बे हैं। तो मुझे कहने लगा, मेरी बात सुन लेंगे, मैंने कहा माफ करना मैं जरा काम कर रहा हूं। कहने लगा मैं क्यूने वालों का ड्राइवर हूं। अच्छा चलो, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा इस कोने में खड़ा हो जा छुप के, वरना और लोग आ जाएंगे, मैं किस किस से मिल सकता हूं? मुझे कहने लगा दिल के तीन वाल बंद है, 12,000 मेरी तनख्वाह है, लाखों रुपए का खर्चा है, मैं कहां से करूंगा, आप ही बताएं। मैंने कहा जो इलाज मैं बताऊंगा वो आपको समझ नहीं आएगी, जब तक आपकी जेब नहीं खुलेगी समझ आएगी नहीं। कहना मैंने आपका बहुत सुना है, आपके पास बहुत लोग दूर दूर से आते हैं, हमें तो अब पता चला पड़ोसियों में आप हकीम भी हैं। पड़ोसी अक्सर, ये निजाम है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, ये सारे यहां चला है, मैं कौन हूं? मेरे आका मदीने वाले को मक्का वालों ने तो बाद में माना, पहले मदीना वालों ने माना, मक्का वालों ने तो निकाल दिया था, हिजरत करा दी थी। अच्छा, कहा आपके पास लोग आते हैं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा एक अमल बताऊंगा, कभी रोए हैं आप? कहने का मकसद आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा आपको मैं रोलाना चाहता हूं, और आपका इलाज रोने में है। कहने का मेरा दिल तो वैसे ही कमजोर है। वो कहते हैं ज्यादा गम ना लिया कर, डॉक्टर कहते हैं किसी मौत पे ना जाया कर, यूं ना किया कर, तुझे हार्ट का खतरा है, एक वाल्व से तेरा जिंदगी का निजाम चल रहा है। वो मेरा दिल तो वैसे ही कमजोर है। मैंने कहा इसको ताकतवर बनाना है, मैंने एक खमीरा देना है मोती वाला, जिसमें चांदी के वर्क, सोने के वर्क और बहुत ताकतवर चीजें होंगी। हाँ, ऐसा कोई अगर हो जाए ना, मैंने कहा वो देना है मैंने, लेकिन महंगा होगा। कहने लगा बस मेरा जरा थोड़ा सा ख्याल रख लीजिएगा, कुछ अपनी तरफ से कर दीजिएगा, जितना मैं होगा मैं दूंगा आपको, बस मेरा ये दिल का मसला हल हो जाए। नौकरी है, गाड़ी ड्राइव करता हूं, लेकिन अब तो दो कदम भी नहीं चल सकता, इधर शुक्र है मुझे ड्राइविंग की नौकरी मिली हुई है, चलो मैं गुजारा चला रहा हूं। फिर मैंने उससे कहा, मैं देख कितने नोट देख, अगर यह खमीरा जो मैं बता रहा हूं इसकी एक खुराक 1200-1300 की पड़ेगी आज के दौर में, कस्तूरी कितनी महंगी है, उस दौर में जाफरान था 3,95,000 रुपए किलो, अब कुछ कम हुआ है। जाफरान उस दिन मैं, हमारी एक दवा है शिफा याबी, मैं इतना सारा जाफरान ला के उसके अंदर अपनी निगरानी में डाला और उसको मिक्स करवाया कि कोई उसकी चुटकी ना निकाल ले, इतना सारा जाफरान उसके अंदर। मैंने कहा मस्तूरी कस्तूरी मुश्क है, और मुश्क हमेशा जो है सोने से महंगा होता है हर दौर में, कस्तूरी असली कस्तूरी हमेशा हर दौर में सोने से महंगी रही है। मैंने कहा अब और अंबर लू तो ये खमीरा तो बनेगा ऐसे, और चांदी के वर्क लू और सोने के वर्क लू, 1200-1200 का तो एक चने के बराबर खुराक पड़ेगी, अल्लाह वाले आप कहां करेंगे। अब एक काम कर ले, आपको मैं एक ऐसा खमीरा देता हूं जिस खमीरी की वजह से आदम अलैहिस्सलाम को फिर जन्नत वापस मिल गई थी, है आंसू वाला खमीरा। आदम अलैहिस्सलाम रोए थे ना, वह वापस जन्नत का दाखला मिला उस खमीरी की वजह से, मैं वो खमीरा देता हूं। फिर मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा कोई तन्हाई का वक्त निकालें, अल्लाह से बैठ के दुआ करें, फिर रोना आएगा, और वो जो रोने वाले आंसू है ना ऐसे ऐसे करके ना दिल पे लगाया करें, और मैंने कहा कोई मौत मर्ग है ना वहां भी जाया करें, रोने वालों के साथ मिलके वैसे ही रोना आ जाता है। और मैंने कहा अगर रोना भी ना भी आए तो जहां टेंटों में औरतें रो रही हैं वहां करीब जाके बैठ करो, औरतों को अल्लाह जजाए खैर दे, ऐसे ऐसे बयान करती हैं, बात सब्जेक्टेड होती हैं, सब्जेक्टेड होती है, सब्जेक्टेड, हाँ बहुत सब्जेक्टेड, ऐसे अजीब अंदाज से जिसको शरीयत ने तो बैन को मना किया है ना, ऐसे अजीब अंदाज से बैन करेंगी कि मैं कहता हूं माई वो अल्लाह की बंदी जो है ना सुभान अल्लाह वो हवा की बेटी ऐसी होगी कि बस तुझे रुला देगी। मैंने कहा रोना है लेकिन ये रोना असल नहीं, अल्लाह के शौक और खौफ का रोना असल है, और उसके आंसू दिल पे लगाएं जहां आप महसूस करें ये दिल के वाल्व है, कपड़े के ऊपर से आंसू लगाते रहे लगाते रहे लगाते रहे। मुझे कहने लगा ये भी करूंगा कोई दवाई बताएं, मैंने कहा जब तक इसकी जेब से खर्च नहीं होगा ना ये बंदा मानेगा नहीं। अब मैं सोचने लगा कौन सी दवाई बताऊं कौन सी दवाई बताऊं। अब मैंने कहा गरीब है 12,000 इसकी तनख्वाह है, इसको अगर मैं अपनी जरगवानी नुकराई देता हूं 2100 रुपए की वो डिबिया है, 10 वर्ष में से गोलियां निकल रही है, और ये कब तक खाएगा बेचारा। एक मेरी और दवा है मैं अपने यहां वहीं बनाता हूं, रूहे अंबर एक छोटी सी शीशी है 8,400 की देता हूं, रूहे अंबर वो मैं आपके यहां नहीं भेजता अपने लिए खुद बनाता हूं, वहां कोई खसूसी मरीज आ जाए कोई मजबूर आ जाए उसकी जेब इजाजत भी दे तो उसको। अब मैं इसको रूह अंबर दो तो इसकी तनख्वाह यही गई। मैंने उसको 1.25 घंटा फिर समझाया, मैंने कहा अल्लाह वाला ना दवाई का, जो डॉक्टरी दवाई खा रहा है चलो तू खाता रहे, 40 दिन का ये नुस्खा है, मैं तेरा पड़ोसी हूं, 40 दिन के बाद आके फिर मुझे मिल कर देख तो सही। पांचवें चौथे दिन मेरी मुलाकात उनसे दूर से है सलाम, मैंने कहा कर रहे हैं ना, कह हां जी कर रहा हूं। कोई मेरे ख्याल में महीना 28 दिन कमोबेश मेरी औकात का तायुन। उसने आके बुलाया कह लगे जी बात सुनिए, जी कह लगे मैं तो ठीक हो गया। मैंने कहा आपके पास इसकी क्या तस्दीक है आप ठीक हो गए, कह लगे मेरा जिस्म खुद बता रहा है कि मैं ठीक हो गया हूं, 2 कदम नहीं चलता था। मैंने कहा टेस्ट करा के फिर मुझे बताएं, पहले टेस्ट की रिपोर्ट दूसरे टेस्ट की रिपोर्ट, और वो टेस्ट है एंजियोग्राफी, फिर मुझे बताएं। उसने कहा जी मेरा टेस्ट पहला ही मुफ्त हुआ था अब भी मुफ्त हो जाएगा, मेरे एक जानने वाले हैं वो मेयो अस्पताल है वहां वहां से मुझे वो करा देते हैं। यकीन जानिए एंजियोग्राफी जब लेके वो सामने आया और मैंने दोनों एंजियोग्राफियों का कंपेरिजन किया मुवाजना किया, एंजियोग्राफी बता रही थी इस बंदे को यह तकलीफ पहले नहीं थी, पहली बता रही थी कि पहले है और फौरी इसको बाईपास की जरूरत है। आप यकीन करेंगे मैं कैसी बात कर रहा हूं? मैं बहुत पढ़ता हूं, बहुत पढ़ता हूं। अभी मेरे बैग में किताब है, पढ़ता हूं। मेरी नजर पे असर है, करीब की नजर पे। अभी कुछ दिनों में कुछ ज्यादा ही हो गया, कुछ ज्यादा हो गया। और मुझे जो करीब की ऐनक मैं बास कभी कभी लगा लेता हूं, रखता हूं, आमतौर पे ऐनक की मुझे जरूरत नहीं पड़ती। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, मैं अपनी आंखों का इलाज आंसू से ना करूं, ये आंसू वापस आंसू में लौटाऊं, आंसू से निकला, आंखों से निकला आंसू वापस आंसू में लौटाऊं। अचानक दिल में ख्याल आया, कोई ऐसे गुमान ख्याल नहीं, अल्लाह ने दिल में डाला, बस अल्लाह की तरफ से कुछ कैफियत भी हुई, बस अल्लाह ने डाल दी, फिर कुछ रोना भी आ गया। आप यकीन जानिए, मैं अपने आंसू कर करके ना अपनी आंख के ऊपर ऐसे लगा रहा था, ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, दाएं हाथ की उंगली से एक ऐसे लगाऊं, फिर लगाऊं, फिर लगाऊं, फिर लगाऊं, और अंदर दिल ही दिल में गुआ कर रहा था, मौला एक छोटे से आंसू के दावेदार आंसुओं को तू दावे को कबूल भी करेगा, और अपनी रहमत से, काम रहमत से होगा, जन्नत की रहमत से मिलेगी। हत्ता के अल्लाह के हबीब ने फरमाया, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला सल्लम ने, मुझे भी जन्नत अल्लाह अपनी रहमत से अता फरमाएगा, काम रहमत से होगा, काम रहमत से होगा। मैंने कहा अल्लाह तो अपनी रहमत से उस छोटे से आंसू से तो मरने के बाद के मसाइल हल कर देगा। अल्लाह मेरी नजर कमजोर हो रही है, अल्लाह तो इसको ठहराव दे दे और इसको सेहत दे दे। आप यकीन जानिए, मुझे अब महसूस होना शुरू हुआ। मैं कल भी रात मैंने सफर किया, मैं यहां पहुंचा, मैं मुसलसल किताब पढ़ता रहा, सवारी में बैठा तो मैं सवारी में किताब पढ़ रहा था, मुसलसल पढ़ रहा था साथ। अब मैं महसूस कर रहा हूं, मुझे एक एहसास हो रहा है कि अगर मैं छोटी सी ऐनक लगा लूं तो मेरी नजर टिकती है, और मुझे एहसास हो रहा है, और ये मुझे ऐसा नुस्खा मिला है कि आप इसको मैं करूंगा, और ये पहली दफा मेरे दिल पे अल्लाह ने खोला। अभी मैं दूसरी दफा आपको अर्ज कर रहा हूं, आज के पहला मजमा है कि ये बात मैं अपने अर्ज कर रहा हूं कि आंख के लिए आंख से निकला हुआ तरियाक आंख में डाल। इन आंसुओं की कीमत, इन आंसुओं की कीमत, बड़े कीमती आंसू हैं, बड़े कीमती आंसू। और दूसरी बात जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, बैतुल खला की दुआ, इस दफा का दर्स भी मैंने लाहौर में उसके बारे में अर्ज किया, इसको मामूली ना समझे, मामूली ना समझे। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, बैतुल खला की दुआ को मामूली न समझे। घरेलू झगड़ों के लिए, घरेलू बीमारियों के लिए, घरेलू तकलीफों के लिए घर मेडिकल स्टोर बन गया है, और घर झगड़ों से, सच बताऊं, ताजमहल हो और घर के झगड़े हो, झोंपड़ी से बदतर है। और झोंपड़ी हो और घर में अमन सुकून और मोहब्बत हो, ताजमहल उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता, सच है, सच है। आपकी जिंदगी में शयातीन और जिन्नात को बहुत दखल है, मेरा बैग लाओ किसके पास है, आपकी जिंदगी में शयातीन और जिन्नात को बहुत दखल है, आपकी जिंदगी में जिन्नात और शयातीन को बहुत दखल है। वो कैसे? मैं एक किताब पढ़ रहा था अपने सफर में, मैं सफर में एक किताब पढ़ रहा था, किताब में मैंने हवाला देखा और निशान लगाया, ये मलफूजात हैं मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, और जिल्द नंबर 2 है। मैं सफर में ये पढ़ रहा था, मेरे अंदर एक परेशानी हुई, मेरे जी में आया कि मैं आपको ये वाकया सुनाऊं और आपको ये वाकया बताऊं कि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको हमें, हमारी समझ में ये बातें नहीं आती, लेकिन हकायक हकायक होते हैं। सफा निकाले, नीचे मैंने लिखा हुआ था, हकायक हकायक होते हैं। आप में से उलमा पढ़े लिखे बैठे, मैं एक आपसे सवाल करता हूं, वक्त ज्यादा तो नहीं हो गया आपसे खुली खुली बातें करूं, हैं? एक सवाल मैं आपसे करूंगा, बहनें भी बैठी हैं, आप हजरात भी बैठे हैं, पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, एक तो मुझे कोई ऐसी दुआ ढूंढ के बताएं जिसमें जिन और जिन्नी दोनों का तस्करा हो, खुबस और खबाइस। मेरी नजर में, क्योंकि मेरा महदूद मुताला है, ऐसी मसनून दुआओं में जिन्नात का तस्करा है, लेकिन कोई ऐसी दुआ जिसमें दोनों जिन और जिन्नी का तस्करा हो वो सिर्फ बैतुल खला वाली दुआ है, और यकीनन होगी, लेकिन मेरे मुताले में नहीं आई। अगर इसलिए अर्ज करो आए तो मुझे जरूर बताइएगा। ये बताएं, झगड़ा एक बंदे से होता है या दो से? दो से होगा ना? हां बस दो से होगा ना? अब एक चीज मैं आपसे अर्ज करता हूं, मियां बीवी इस वक्त घर घर झगड़े हैं, घर घर झगड़े, कोई ऐसी आग लगी हुई है, उस आग की वजह भी मैं जानता हूं और आपको अर्ज भी करता हूं, इस आग की बुनियाद नंगा गोश्त है, नंगा गोश्त। एक बुजुर्ग थे मौलाना गुलाम कौस हजारवी रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते थे कि बिल्ला भी भूखा हो और गोश्त भी नंगा हो, क्या वो एक तरफ मुंह करके हट के चला जाएगा? मेरे सामने कई जिन्नात ने मुझे बताया, मेरे कोई जिन ताबे वगैरह नहीं है, ना मैं कोई बुजुर्ग हूं, ना मुझे कश्फ होता है, ना मैं वली हूं, ना मैं पहुंची सरकार हूं, मैं एक पूड़ियां बांधने वाला आम सा हकीम हूं, अपनी हकीकत बता देता हूं, लेकिन बाज वक्त अमल के दौरान जिन्नात मेरे सामने बोलते हैं, और मुझे कई जिन्नात ने, एक नहीं दो नहीं, मेरे पास बेशुमार वाक्य आते हैं, कई जिन्नात ने यह बात बताई है, और वह यह बताई है कि हम औरत के नंगे गोश्त पे आशिक हैं। मैं ये बात खुले बंदों कहते हुए झिझक रहा हूं, माजरत चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मुझे इसका कोई मुतबादल लफ्ज नहीं मिलता, मैं माजरत चाहूंगा। और मैंने तजर्बे किए हैं, जिन खवातीन का जिस्म खुला हुआ होता है जितना ज्यादा, उनके मसाइल, उनकी मुश्किलात, उनकी उलझने, उनके झगड़े, उनके नफ्सियाती केस, उनका स्ट्रेस, उनकी एंग्जाइटी, उनकी टेंशन, उनकी जिंदगी की नाचाकियां, उनकी जिंदगी में परेशानियां उन लोगों से नहीं होती जिनका जिस्म ढका हुआ होता है। ये मेरे बारहा के तजर्बात हैं, साल हा साल से, मैं 1984 से मरीज देख रहा हूं, बाकायदा 1991 से मैं क्लिनिक कर रहा हूं, 91 से लेकर अब तक कितने साल हो गए हैं, मैं अपने मुशाहदे की बुनियाद पर कह रहा हूं, हजारों डाक मेरे पास आती हैं और बेशुमार लोग मुझे मिलते हैं, हर मिलने वाला अपने तजर्बात छोड़ के जाता है, हर मिलने वाला मुझे कुछ सिखा के जाता है, मैं हर मिलने वाले से सीखता हूं, इसका बहुत असर होता है, और जिन्नात का हमारी जिंदगी पर बहुत दखल है। ये मैं एक वाक्य सुना रहा हूं, कल मेरी नजर से गुजरा, कल नजर से गुजरा, सफा नंबर है, जल्द दोम है, सफा नंबर 146 है, और मैं कि हमारे एक मोतकिद ने बयान किया कि हमारे गांव में बहुत ज्यादा ताउन फैल गया, ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात अर्ज कर रहा हूं, पुरानी बात है, ये 18वीं सदी की बात है, 19वीं सदी नहीं, यानी 1900 शुरू ही नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है, कि बुजुर्गों ने जमा हुआ कि भाई कोई अल्लाह के नाम पे खैरात की जाए, कहीं हमारी बस्ती में जो है ताउन ना आ जाए, हमारे यहां भी ना आ जाए, ताउन तो जो फैलता था तो फिर बस्तियों की बस्तियां खत्म हो जाती थी ना, यानी यहां तक इसी ताउन की तारीख में मैंने पढ़ा, घर का एक फर्द मरा तो उसको दफन नहीं किया, सारे मर गए, एक कमरे में डाल के उस कमरे को लेप दिया, कब्र वहीं बन गई, दफन करने वाले ही मर गए, कब्रें खोदने वाले खुद मर गए, ताउन इतना फैला, इतना फैला, इतना फैला। अब मैं जो वाक्य अर्ज कर रहा हूं, एक मुस्तनद किताब मेरे पास है, उसका मैंने तस्करा किया है, कहने लगे कि खूब खाना पकाया, खाना निकालने से पहले फुकरा में से उन्होंने गरीब फुकरा को खाना खिलाए, सदका तो रद्द बला, सदका है अल्लाह बलाएं रद्द करे। एक लंबे कद का आदमी आया और उस खाना मांगा, लोगों ने कहा थोड़ी देर ठहर जाओ, जल्दी ना करो, उसने कहा मैं फकीर किस्म का आदमी हूं, भूखा हूं, मुझ में एक प्लेट में जो देना है दो, बस मैं जाता हूं, लोगों ने ना दिया, उसको डांट डपट की और कहा कि भाई बैठ जाओ, आपको शानदार अंदाज से खाना खिलाएंगे, अब तसल्ली करें। वो तेजी से लौटने लगा बगैर खाए, और इतने तेजी से गया कि मुझे उसके पीछे चलना दुश्वार हो गया, मैंने उसको पुकारा, मैंने उसको पुकारा कि इतनी जल्दी ना करो, आबादी से बाहर क्यों जा रहे हो, खा के जाओ, हमने सब फोकरा के लिए मसाकीन के लिए खाना खिलाया, आप बगैर खाए ना जाओ, मैं तुमको खिलाऊंगा। तो उसने कहा मैं भूखा वगैरह कुछ नहीं हूं, मैं कौमी जिन्नात में से हूं। वो देखो सामने एकदम ऐसे हो, उसने उंगली की, सब पर्दे हट गए, वो देखो सामने हमारा पड़ाव है, हमारी कौम वो बैठी है। मैं सिर्फ तुम्हारी आजमाइश और इम्तिहान के लिए आया था कि तुम लोग खुदा से डर के खिला रहे हो या महज शान और शौकत दिखावे के लिए खिला रहे हो। लेवा झेल्ला, अल्लाह की रजा के लिए खिला रहे हो या दिखावे के लिए खिला रहे हो, मैं ये देखने आया था। और अगली बात सुने जो हैरत अंगेज है, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। इसलिए सुबह की अजान के वक्त तुम पर हमारा हमला होगा, यानी फजर के बाद। अगर तुम उससे बचना है, तरीका यह है कि अपने अहल और याल को लेकर इस बस्ती से, यानी जहां से निकल जाओ। तुमने सदका किया है और अल्लाह के लिए किया है, और सदका बलाओं से बचाता है। फजर के बाद हमारा हमला होगा, और तुम अगर निकलना चाहते हो, अभी से बोरिया बिस्तरा बांधो, अपने घर वालों को यहां से निकल जाओ। वो कहते हैं फौरन वो उसके बाद गायब हो गया। मैं वो कहने लगे उसने फौरन घर वालों को लिया निकाया, और कहने लगे जब सुबह हुई मालूम हुआ कि उसको गिल्टी निकली, उसको निकली, और मुस्तकिल जनाजे उठना शुरू हो गए। एक सवाल मैं आपसे करूंगा, बैग में रखते हैं। एक सवाल मैं आपसे करूंगा, बीमारी का ताल्लुक, ताउन का ताल्लुक एक खास वायरस होता है, मैंने मेडिकल में पढ़ा है, एक वायरस होता है, एक जरासीम होता है, वो फैलता है, चूहे से आता है, इस तरह होता है, इस तरह होता है। ये तो इसकी पैथोलॉजी है, मैं इसकी इस वक्त पैथोलॉजी बयान नहीं करता, ये तो इसकी पैथोलॉजी है। और एक तरफ बीमारियों के निजाम के लिए ला इलाज बीमारियां हों, कलाम इलाही से क्यों ठीक होती हैं, मुझे आपसे सवाल का जवाब चाहिए। अगला क्यों कह रहा हूं, गौर से बैठे, सो तो नहीं रहे। अगला क्यों, ला इलाज बीमारियां चारों कुल से ठीक क्यों होती हैं, ला इलाज बीमारियां मसनून दुआओं से ठीक क्यों होती हैं, जहां एंटीबायोटिक, जहां सर्जरियां, जहां बड़ी बड़ी दवाएं और बड़ी बड़ी बीमारियां नाकाम हो गईं, आखिर वो क्यों ठीक होती हैं, इस क्यों का जवाब आप दें मुझे। मैं खुद अर्ज करता हूं क्यों ठीक होती हैं, उसकी वजह यह है बीमारियों की बुनियाद कहीं और है। हम वो देख रहे हैं जो चेहरे की आंखें हैं, हम चेहरे की आंखों से सब कुछ देखते हैं, क्या ख्याल है ऐसे, फिर चेहरे की आंखों से देख के फिर फैसले करते हैं। एक वो आंखें हैं जो गैबी और लाहूती और मलाकूती आंखें हैं, और वो आंखें हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, जो अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने इल्म में से इल्म दिया था, वो इल्म अल्लाह के अता करदा इल्म वाली आंखें हैं, जो लदुन्नी और वहबी आंखें हैं, जो गैबी आंखें हैं, वो ये हैं जो किसी किसी के सामने बाज़ औक़ात खुल जाती हैं, और अल्लाह मुझ जैसों को, आप जैसों को सबक सिखा दिखा देते हैं, वो ये हैं, ये बीमारियां शयातीन जिन्नात के जरिए आती हैं और फैलती हैं मुआशरे में, हैजे के नाम पे, ताउन के नाम पे, कैंसर के नाम पे, इन चीजों के नाम पे ये आती हैं। ये जो बैतुल खला की दुआ है ना, मसनून दुआ, बैतुल खला की मसनून दुआ अनोखी दुआ है, अनोखी दुआ है। इस दुआ को याद करें, अगर नहीं है तो, अक्सर को याद होगी, अगर नहीं है तो मेरी आपको मिन्नत है, याद करें। मैंने घरेलू झगड़ों में, अभी इसी दर्श में मैंने एक वाक्य सुनाया, आपको सुना देता हूं। वो शख्स अभी भी वहां हमारे लाहौर तस्बीखाने में है, दो हफ्तों के लिए इंग्लैंड से यहां तस्बीखाने में वक्त गुजारने आया, पूरी दुनिया से लोग आते जाते रहते हैं वक्त गुजारने के लिए। ऐसे में बैठा अपने मरीजों की अपॉइंटमेंट से फारिग हुआ तो बहुत से लोग ऐसे बैठते थे, मैं आके बैठ गया। मैंने कहा हाल सुनाओ भाई, आप कहां से आए, आप कहां से आए, आप कहां से तशरीफ लाए। कहने लगी जी मैं इंग्लैंड से आया हूं, मैंने कुछ लोगों से हालात पूछे, अपना कोई हाल बताओ, कोई अमल बताओ जो मुशाहदे में आया होता। मैं लोगों से सीखता रहता हूं, मैं तालिबे इल्म हूं। मुझे कहने लगे जी एक सुपर चीज मैं बताता हूं और एक बाकमाल चीज बताता हूं, उसके लफ्जों का मफहूम अर्ज कर रहा हूं। वो ऐसे ही कहना चाहता था, मेरी वालिदैन ने शादी जल्दी कर दी, बस शादी होना थी, मेरे घर में आग लग गई, झगड़े परेशानियां मुश्किलात मसाइल आग लग गए, और आग ऐसी लगी ऐसी लगी, आग ऐसी लगी कि बस आग लग गई मेरे घर के अंदर। तो कहने लगे कि मैं परेशान, बीवी अम्मा मां किसको संभालूं, और बहु सास में आग, मेरे दरमियान आग, थक हार के ना। कहने लगे मैं कंप्यूटर का बहुत बड़ा इंजीनियर हूं, मैंने अपने अहबाब से कहा, रिश्तेदार मेरे यूके में रहते थे इंग्लैंड में, उनसे कहा कि मेरे लिए कोई इंतजाम करो, उन्होंने इंतजाम किया, मैं इंग्लैंड में चला गया, मेरे गले से मेरी बीवी छूटी। अब वहां मैसेज और फोन, मां कहे कि इसने नात का मेरा के, इसको बुला वहां, इसको वहां बुला, बीवी कहे मुझे बुला। थक हार के आखिरकार मैंने क्या किया, नामुकम्मल दानिश्ता कागजात डॉक्यूमेंट्स जो हैं, नामुकम्मल अनकम्प्लीट वो डॉक्यूमेंट्स उसके भिजवा दिए। मैंने कहा मैंने तेरे कागजात जमा करा दिए हैं, जब आ जाएंगे आ जाना। कहने लगे लोगों के साथ साथ साल डॉक्यूमेंट्स जो है एक्सेप्ट नहीं होते थे, दो महीने में मुकम्मल होकर बीवी मेरे सामने बैठी थी, नामुकम्मल कागज दानिश्ता भेजे कि भाई ये आए ही ना, फिर झगड़े होंगे। अब फिर झगड़े, बीवी इंग्लैंड में आ गई, फिर झगड़े। कहने लगे मेरी वालदा वहीं लाहौर में दर्श में जाती थी, उन्होंने मुझे फोन पे बताया कि तू बैतुल खला की दुआ पढ़, वो झगड़ों को खत्म करने के लिए हकीम तारिक ने कोई वाकयात सुनाए हैं, बहुत लाजवाब है, तो दुआ बैतुल खला की दुआ पढ़, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबसि वल खबाइस। छोटी सी दुआ है, याद नहीं है, जरूर याद कर ले, जरूर याद कर ले। हम पाकिस्तानी बहुत समझदार हैं, बहुत अकलमंद हैं। मैंने कई पाकिस्तानियों को देखा, पंजाबी बोलने वाले, मेरे पास बैरून मुल्क से काली आती है ना, हफ्ते के दिन बड़ी रंग बिरंगी काली आती है, पूरी दुनिया की काले सुनता हूं। मुझे कहने लगे कीम साहब मैं पंजाबी बोल सकना, उर्दू नहीं बोल सकना, या इंग्लिश बोल सकना, इंग्लिश नहीं बोल, या इंग्लिश बोल सकता हूं या पंजाबी, उर्दू नहीं बोल सकता, तुम पंजाबी जान ले जे। मैं बिस्मिल्ला सरडम बोलो, यानी उर्दू नहीं बोल सकता, वो पंजाबी बोलने वाला इंग्लिश फर फर बोलता है, गोरे को पागल कर देता है। क्या वो सीखने पे आए तो कुरान की मसनून दुआ या हदीस की नहीं सीख सकता? पेस्टिसाइड जरी अदवियात की बड़ी मुश्किल से मुश्किल अल्फाज, ये जरी अदवियात के सप्रे बड़े मुश्किल अल्फाज, देहाती को सारे याद होते हैं, सारे दफे याद होते हैं, कानून के जिम्मेदार को देहाती को निर्रा अनपढ़, बड़ी बड़ी मुश्किल सिगरेट की डब्बियों के नाम उसको याद होते हैं, होते हैं, बीज इसका नंबर यह है याद होते हैं। जरूरत जब पड़ती है, जब मजबूर होता है, तो सब याद हो जाते हैं। मेरी आपसे दरखास्त है बैतुल खला की दुआ को याद करें, अगर नहीं है, अगर है तो फिर मुझसे आज तरीका मैं अर्ज कर रहा हूं समझें, आप यकीनन पढ़ते हैं, लेकिन जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं इसके मुताबिक जरा तवज्जो फरमाएं। जब भी बैतुल खला में जाएं, मसनून तरीका यही है, बायां कदम रखें, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबसि वल खबाइस दुआ पढ़ के जाएं, जब अंदर जाएं अंदर भी मुसलसल पढ़ें, लेकिन जबान से नहीं, जबान से नहीं, दिल से, बिल्कुल दिल से। हमने बहुत फतवे इकट्ठे किए हैं और फतावे हमने इकट्ठे किए हैं, क्यों? एक बात ज़हन में रखिए, सेहत मिल जाए और अगर शरीयत चली जाए वो सेहत हमें नहीं चाहिए, ईमान चला जाए वो सेहत, वो तंदुरुस्ती, वो खैर हमें नहीं चाहिए। हमने अपनी शरीयत को हमेशा गालिब रखना है, मगलूब नहीं रखना। तो फतावा फतवे के एतबार से बैतुल खला की दुआ जो है वो दिल में पढ़ सकते हैं। यहां तक फतवा है जी कि अगर बैतुल खला में छींक आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं, फतवे में लिखा है, जुबान से नहीं दिल से कह सकते हैं। यह मैं आपको थोड़ा सा वजाहत अर्ज किया, बाकी उलमा से पूछते रहे। बैतुल खला की दुआ मुसलसल पढ़ते रहे। अभी मैंने एक लतीफा भी अर्ज किया था, मैं एक खानदान बैठा था, उन खानदान में सारे झगड़े ही झगड़े थे, झगड़े ही झगड़े। मैं उनसे एक मिन्नत कर रहा था, अल्लाह वालों बैतुल खला की दुआ पढ़ो, और ये रूहानी गुस्ल बैतुल खला की दुआ वाला बड़ा कामयाब तरीन रूहानी गुस्ल है, ये करो। मैं उनको बार बार एक बात कह रहा था, सारे तो मान गए। एक जवान मम्मी डैडी था और कुछ जरूरत से ज्यादा ही था, वो कहने लगे जी मुझे आती नहीं। मैं याद कर लो, तेरी मेहरबानी, याद कर ले। उसने कहा अच्छा मैं याद करूंगा। सारे घर वाले, बड़ा भाई भी बैठा था ना, जब उसने कहा ना मैं याद कर लूं पढ़ूंगा बैतुल खला की दुआ बैतुल खला में, दूसरा भाई के जोर से कहने लगा या अल्लाह इसको कब्ज हो जाए। समझ नहीं आई। दूसरा भाई कहने लगा जोर से कि या अल्लाह इसको कब्ज हो जाए, यानी कब्ज होगी कुछ देर बैतुल खला में, ज्यादा देर बैठेगा चलो ज्यादा ही पढ़ लेगा, यही झगड़े करता है सारा दिन, गुस्से में रहता है, इसी का गुस्सा ही खत्म हो जाएगा। ये एक लतीफा था मैंने अर्ज किया। मेरे पास झगड़ों वाला केस, हां मैं उस जवान की बात कर रहा था यूके वाले की, मुझे कहने लगे मेरी वालदा ने बताया कि वो हकीम तारिक ने बताया कि बैतुल खला की दुआ पढ़, तू पढ़ बेटा। मैंने पढ़ना शुरू कर दी, शावर लेता था, गुस्ल करता था तो मुसलसल पढ़ता था, मुसलसल पढ़ता था। बैतुल खला में इंसान रोटी ना खाए, खाए पिए सोए ना, लेकिन ये हमाम टॉयलेट एक ऐसी चीज है, ये इंसान की मजबूरियों में से बड़ी मजबूरी है। तो कहने लगे मैंने उसको करना शुरू कर दिया। आज वो बीवी है, वो बीवी जो मुझे कहती है आपकी तस्बीहात का टाइम हो गया है, हकीम तारिक से बैत है, उसने कुछ तस्बीहात बताई हैं, ये वक्त हो गया है आप तस्बीहां कर लें, मेरे खाने का ख्याल, मेरे पीने का ख्याल, उसको मैं ख्याल रखता हूं, वो मेरा ख्याल रखती है। घर में सुकून, घर में मुस्कुराहट, घर में चैन, बीमारियां खत्म, दुख खत्म, तकलीफें खत्म, मेडिकल स्टोर घर से खत्म, हकीम तारिक की दवाएं घर से खत्म, सब कुछ खत्म। कैसे हो गया, कैसे हो गया बताएं। जिन्नात का हमारी जिंदगी में दखल है। अच्छा आपके सामने वह हदीस मुबारक नहीं आई जब बंदा बिस्मिल्लाह ना पढ़े खाने में शैतान शामिल हो जाता है, और वह हदीस मुबारक सामने आई होगी। मैं सिर्फ हवाले देते हुए आगे गुजर रहा हूं कि मैंने आपको कुछ एक अमल और भी देना है, इसलिए मैं ये मुख्तसर से हवाले देते हुए आगे गुजर रहा हूं। फिर पता नहीं कराची आना हो ना हो, चलो कुछ ना कुछ तो मैं जो मेरे पास आपकी अमानतें हैं वो लौटा जाऊं। अच्छा आपको वो तो हदीस मुबारक का सामने आई होगी कि एक साहब आए खाने में बगैर बिस्मिल्लाह के, एक बच्चा शामिल हो गया, और फिर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह अव्वल व आखरू या सहाबी ने पढ़ा और उसको कह आई, और आका ने फरमाया कि इतनी कह आई उसकी आंखें बाहर आ गई और आप मुस्करा दिए। ये एक हदीस मुबारक है जिसका मैंने मफहूम अर्ज किया है। हमारी जिंदगी में शयातीन को कदम कदम पे दखल है, कदम कदम पे दखल। मैंने एक दफा, एक दर्श है मेरा पुराना बैतुल खला का दर्श, उसमें मैंने वाजे अर्ज किया था कि ये जो जरासीम की थ्योरी है, फिर मैंने बड़े बड़े पैथोलॉजिस्ट, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से और बड़े बड़े साइंसदानों से इस मामले में डिस्कस की, वो मान गए कि ये जो हमारे जरासीम की थ्योरी है इसके पीछे जिन्नात और शयातीन की बहुत निजाम है। याद रखना, मैं माजरत चाहता हूं, कोई किताबें साइंस की पढ़ी हैं? हां, मैंने कोई साइंस पे डॉक्टरेट और पीएचडी की डिग्री भी ली हुई है, और साइंस मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरी छोड़ी हुई बातें ना समझना, मैं बड़े हवालों से बातें कर रहा हूं। ये मसनून दुआओं की ताकत और मसनून दुआओं की तासीर जिंदगी के बड़े बड़े दुखों, रोगों और तकलीफों से बचाती है। इस वक्त मुआशरे में आग जबानों के नाम पे, इलाकों के नाम पे, नस्लों के नाम पे, रंगों के नाम पे, कौमों के नाम पे, मुल्कों के नाम पे आग लगी हुई है। आप में से कोई शख्स नहीं जाता, नहीं चाहता, नहीं चाहता। सच्ची बात है, जो जिंदगी भर ना मस्जिद में नहीं आया मेरे कमले वाले का उम्मती है, वो भी नहीं चाहता। जो हर वक्त मुसल्ले पे बैठा है वो भी नहीं चाहता। और मुझसे सच पूछते हैं तो हुक्मरान भी नहीं चाहता और महकूम भी नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, कोई नहीं चाहता ये आग लगे, वो हमारे गुनाहों की आग है। बिफर गए हैं ये शयातीन के लश्कर, बिफर गए हैं ये शयातीन के लश्कर। क्यों फरमाया, जब बंदा झूठ बोलता है एक मील कमोबेश उससे या तीन मील फरिश्ते दूर हो जाते हैं। मालूम हुआ जिससे फरिश्ते दूर होंगे फिर उसके करीब तो शयातीन ही रहेंगे और क्या रहेंगे। हमारे गुनाह हैं, हमारी नाफरमानियां हैं। ये जो बैतुल खला की दुआ है ना, ये गमों के लिए, झगड़ों के लिए, तकलीफों के लिए बहुत अजीब है। मेरे पास एक साहब आए रोते रोते, आके रोना शुरू कर दिया। मैं कहा भाई टिश्यू भी दिए, मैं कहा जल्दी कर, दूसरे का नंबर लगा हुआ है, अपनी बात कर। उसने कहा जी बस मुझसे कोई गलती हो गई है। मैंने कहा क्या है? उसने कहा मैं हर वक्त मां से लड़ता हूं और मां को मैं नंगी गालियां देता हूं। पहले तो एहसास था नहीं, कुछ एक दो दर्स होने अल्लाह ने दिल की दुनिया बदली, अब एहसास हुआ कि मैं ये क्या गुनाह करता हूं, मेरा बनेगा क्या और मेरी आखिरत का क्या बनेगा, मेरे बस में नहीं है, मैं ना चाहते हुए ऐसा करता हूं। कोई आप इसका हल बता सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल बताऊंगा, और ये ऐसा हल है कि तू इंशाअल्लाह ताला गालियां खुद तुझे छोड़ जाएंगी, तुझे गालियां छोड़ने की जरूरत नहीं, गालियां तुझे खुद छोड़ जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैंने उससे अर्ज किया, मैंने कहा तू ना ऐसा कर, बैतुल खला की दुआ पढ़ने का अहतमाम कर, जितना वक्त मजबूरन तुझे बैतुल खला में गुजारना पड़े तो वहां पढ़, उसके अलावा सारा दिन यही पढ़ 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 पढ़, वुजू बे वुजू पढ़, वुजू बे वुजू पढ़ पढ़ तो, और मेरे पास फिर आ मुझे बता, ना मिल सके मुझे दस्ती खत लिख दे मुझ तक खत। आप यकीन जानिए उसका बाद में मुझसे राबता हुआ, उसी बंदे ने मुझे कहा, उसने कहा जी कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरे जिक्र से हर वक्त दरूद निकलता है या कलमा निकलता है या आमाल निकलते हैं या सुबहान अल्लाह निकलता है, गालियां मेरी जुबान से चली गई। पहले मां मुझे बद दुआएं देती थी, अब मां दुआएं देती है और पिछली बद दुआओं के बारे में भी कहती है कि बेटा पता नहीं बस मुझे क्या हो जाता था, तू गालियां देता था मैं तेरे लिए बद दुआएं निकालती थी, बेटा मैंने तुझे तो दुआओं से लिया था, अल्लाह से कहते कि अल्लाह मैं अपनी बद दुआएं वापस लेती हूं, मेरे बच्चों को कहीं बद दुआएं ना लग जाए। मुआशरे की जलती आग के लिए मसनून दुआओं का साथ लें, मुआशरे की लगी आग के लिए सच्ची बात है मसनून दुआओं का साथ। मुझे एक कलमकार है, किताबों का राइटर है और कलम का शाह सवार है, मैं नाम नहीं लेता, मुल्क का एक मशहूर आदमी है, मेरे पास आया, मुझे कहने लगा कि मैं आपसे दवाई लेने नहीं आया, वजीफा लेने नहीं आया, तस्बीह लेने नहीं आया। मैंने कहा क्या करने आया? क्या लगाम लेने आया हूं। मैंने कहा किसको डालनी है? बीवी को। क्यों? क्या बहुत बद जबान है, गालियां देती है, बच्चों को सारा दिन मारती है, लड़ती है, गुस्सा करती है। तो मैंने कहा कोई वजह तो होगी बेचारी, ऐसा तो नहीं है, कसूर आपका भी होगा, ताली एक तो हाथ से तो नहीं बचती। कहने लगे जी मेरा कसूर नहीं है। मैंने कहा होगा। कहने लगा अगर आप कहते होगा चलो फिर मुझे भी लगाम डाल दें, उसे भी डाल दें, डाल दें लगाम, मैं आपसे लगाम लेने आया हूं। आप कहें मैं आपकी तस्बीहां पढ़ूं, मैं वजीफे करूं, कुछ भी नहीं करूंगा, मैं जुमे की नमाज भी एहतियातन पढ़ता हूं, नौज बिल्ला उसने मुझे ये कहा, और ईद वगैरह की नमाज कोई सवाल होगा मैंने नहीं पढ़ी क्योंकि मैं रात को देर से सोता हूं, सुबह मैं 2 बजे 1 बजे उठता हूं, उस वक्त तक ईद मुसलमानों की हो चुकी होती है, ये उसके अल्फाज हैं। तो कोई है वजीफा आपके पास? मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन अब पढ़ूंगा नहीं। मेरे को ना अपना पढ़े, मैं आपको कोई वजीफा नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, और आपका काम हो जाएगा। तावीज देंगे? मैंने कहा नहीं, तावीज मैं वैसे ही नहीं देता, कोई हजारों में से किसी एक को दे दिया, मैं तो अमाल बताता हूं। अरे क्या करेंगे? कहने लगे फिर क्या करेंगे आप? मैंने कहा आपको मैं बैतुल खला भेजूंगा। मुझे ऐसे हैरान होकर देखने लगा, ये क्या दीवाना हो गया, ये मुझे दीवाना समझता। कहने लगे मैं जाता हूं, आपको जाने की, आपको भेजने की जरूरत नहीं। मैंने कहा नहीं, मैंने स्पेशल भेजना है, दाखिला करवाना है आपका, वहां एडमिशन करवाना है, और मेरे पास टॉयलेट एडमिशन का बकायदा फॉर्म है, आपको पुर करना होगा, और उसकी एडमिशन फीस कोई नहीं है सिवाय एक लोटे के। कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने आपका एडमिशन कराना है। असल में वो जिस टोन से बात कर रहा था, मैंने उसको उस टोन से समझाया, वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, उसको उसी टोन से मैंने कहा, इसको समझ ऐसी आएगी। मैंने कहा आपका मैंने एडमिशन कराना है और आप ठीक हो जाएंगे। मुझे कहने लगे आप मुझे क्या समझ रहे हैं, क्या बात है? मैंने तो समझा था आप हकीम साहब हैं, आप कोई बात बताते हैं, ये क्या बात है? कर एकदम गुस्से में आ गए। मैंने कहा देखें, गुस्सा करना है तो मैं अभी बेल देता हूं और पेशेंट आ जाएगा, पीछे बैठे हूं, आपको टाइम 3 मिनट मैंने ज्यादा दिए, घड़ी पे मेरी नजर होती है, आप कलमकार हैं तो मैं भी कलमकार हूं, आप राइटर हैं तो मैं आपसे ज्यादा हूं, आपने 5 किताबें लिखी, मेरी 150 किताब है, बोले क्या चाहते हैं? कहने लगे बताएं आप चाहते हैं क्या? अजस आ गया बेचारा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा बैतुल खुला की दुआ याद है? कहने लगे नहीं। मैंने कहा सिर्फ वही याद कर ले, बैतुल खुला में पढ़ लिया करें, आपका मसला हल हो जाएगा। कहने लगे मुझे लिख दे, मेरे पास कोई छपी पड़ी थी, मैंने उठा के दे दी। मैंने कहा ये याद कर ले। मैंने कहा कर लेंगे। कहने लगे मेरा हाफजा बहुत अच्छा है, मसला नहीं, याद कर लूंगा, अरबी मुझे आती है। कहने लगा कितने दिन में काम होगा? पक्का था, गारंटी ले रहा था मुझे, कितने दिन में काम होगा? मैं कहा जितने दिन में आप पागल बनेंगे उतने दिन में काम हो जाएगा। कहने लगे बैतुल खुला पहले भेजने आप मुझे पागल करने? मैंने कहा इस वजीफे का ताल्लुक, फिर मैंने वो वाकया सुनाया जो आपको पहले भी सुनाया था, कि मेरे पास एक साहब आए, मुझे कहने लगे जी वजीफा मैंने लिख दिया, लिखने के बाद कहने लगे तादाद, नीचे मैंने कागज पे लिखा पागल, पागल, पागल। कहने लगे इसकी तादाद क्या है? मैंने कहा पागल, बस जिसको मिला दीवानगी से मिला, जो जिसने पाया इश्क से पाया, और मस्ताना हो गया, दीवाना हो गया, फिर मिला पागल। मैंने कहा पागल हो कि इसको पढ़, तेरा काम जल्दी हो जाएगा। कहने लगा ठीक है। कहने लगा वजीफा तो फिर भी आपने बता दिया। मैंने कहा मैंने तो मसनून दुआ बताई है बैतुल खुला का, वजीफा कहां बताया तुझे? मैंने वजीफा तो नहीं बताया, वो तो दुआ बताई है जो बैतुल खुला में तेरी जरूरत है वो पढ़। आप यकीन जानिए, फिर मैंने उससे खुद फोन किया, कोई मेरे ख्याल में 7-8 दिन के बाद मैंने फोन किया। मैंने कहा हकीम तारिक अर्ज कर रहा हूं, पहचाना आपने? कह रहे हाँ हाँ। कहने लगा यार उसके दुआ पे तो मैं कालम लिखने लगा हूं, लेकिन लोग मुझे पागल कहेंगे, वो मैं लोगों को कैसे कहूं, सोच रहा हूं कालम लिखूं। और बड़ा मशहूर कालमकार है, उसके अखबारात में बड़ा नाम है पाकिस्तान, है ना, उसमें कालम लिखने लगा हूं। मैंने कहा कैसे? कहने लगे कि मैंने वो दुआ तो आपकी आते आते याद कर ली थी, उसको मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था, आपकी बातें मेरे दिल पे लगी थी, और मैंने कहा था इसका हल है कोई, और है यही कि मैं इसी को पढ़ना शुरू कर दूं, लिहाजा मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। और आपको पता है मैं 3 सिगरेट टॉयलेट में खत्म करता हूं तो फिर उठता हूं, 3 सिगरेट टॉयलेट में खत्म करता हूं तो फिर उठता हूं। इतनी देर में बस मुझसे एक गलती हुई, मैं सिगरेट भी पीता रहा यह भी पढ़ता रहा। कहने लगा यह जायज है? मैंने कहा यह उलमा से पूछना, मैं मुफ्ती नहीं हूं, मैं जड़ी बूटियों का मुफ्ती हूं, दीन का मुफ्ती उलमा जाने, उनके मसाइल जाने। और मुझे कहने लगे बड़ा फायदा हुआ। फिर उसने मुझे और फायदे बताए, कहने लगे मेरी नींद की गोलियां छूट गई, मैं 5 गोलियां खाता था, नींद की गोलियां छूट गई, हर वक्त गुस्सा आता था, मेरे मुंह में गाली होती थी, कहने लगे माँ और बहन से नीचे की बात नहीं करता था, वो मेरी खत्म हो गई हैं। अभी थोड़ी थोड़ी कहने लगे हैं सही वैसे। मैंने कहा टाइम कौन सा हुआ है, ये काफिर मुंह को लगी हुई बड़ी पुरानी है। मैंने कहा कितनी उम्र है आपकी, कह रहे 50 से अबव हूं मैं, 50 से ऊपर हूं। तो मैंने कहा कुछ वक्त थोड़ा सा लग जाएगा अभी तो। कहने लगे मेरी नींद पूरी हो गई, बेहतर हो गई, मेरी गालियां बहुत सारी छूट गई, मेरा गुस्सा खत्म हो गया और बक बक मेरी खत्म हो गई। लफ्ज उसने इस्तेमाल किया, बक बक मेरी खत्म हो गई, घर में सुकून 70% आ गया और मेरी जिंदगी में सुकून आ गया, मुझे चैन आ गया। ये बैतुल खला की दुआ आम जिंदगी में आपको कैसे सूझी, ये इजाद कैसे की? मैंने कहा अल्लाह ने दिल में डाली थी, जैसे अल्लाह ने बैठे बैठा मेरे दिल में डाला। तारिक तेरी नजर कमजोर हो गई है कुछ ज्यादा, अपने आंसुओं को अपनी आंखों में डाल, ऐसे अल्लाह ने दिल में डाला ना। मैंने कहा ऐसे ही अल्लाह ने दिल में डाला। आप ये दुआ पढ़िए, मुआशरे में चैन सुकून, और बैतुल खला में सख्ती से जुबान से नहीं पढ़ना, दिल से पढ़िए, इसकी अजीब ताकत है और इसकी अजीब तासीर है। आप सोच नहीं सकते इसकी ताकत और तासीर के क्या कमालात है। और एक आखिरी वजीफा आपको देना चाहता हूं, जादू के लिए, जिन्नात के लिए, मुश्किलात के लिए, मसाइल के लिए, घरेलू उलझनों के लिए, जिंदगी की नाचाकियों के लिए, मुश्किलात मायूसियों के लिए, ये चीज मैं आपकी खिदमत में जरूर देना चाहूंगा। उम्मीद है कि आप इस पे तवज्जो करेंगे। ये सूरतुल मोमिनून की आखिरी चार आयात में एक आखिरी आयत है। आखिरी चार आयात के बड़े अनोखे कमालात हैं, लेकिन आखिरी चार आयात की आखिरी आयत है रब्बे गफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। बस इतनी मुश्किल है, अगर किसी को याद नहीं जरूर याद करें। मैं आज आपको याद के याद पे और याद दहानी पे बार बार दरखास्त कर रहा हूं, अगर किसी को याद नहीं जरूर याद करें। मैंने इसको बे औलादों पर बड़ा आजमाया, बे औलादों पर, और वो लोग जिनकी औलाद बहुत ज्यादा नाफरमान थी, और वो लोग जिनका घर फक्र फाका, गुर्बत, तंगदस्ती और मुश्किलात से लुट चुका था। मैंने बहुत आजमाया, कर्जों वालों पे, कर्जों में मारे हुए, बीमारियों के मारे हुए, जादू के मारे हुए, और जिन्नात सामने आके कहते थे जिसके पास जाना है हम हकीम तारिक कभी देख लेंगे, उसके पास गए थे ना, मुझे आके बताते हैं, जिन्नात के हाथ के लिखे हुए रुक के मुझे दे गए। कहने लगे जी ये ऊपर से गिरा, खातून कहने लगी किचन में खाना पका रही थी, ऊपर से किचन में गिरा और मेरे सामने आके गिरा, उस पे लिखा हुआ था कि ये रुक का हकीम तारिक को पहुंचा दो। और मैंने कहा कुछ नहीं होगा, जो बताना है तुझे बचा ले, तुझसे भी निमट लेंगे, इनसे भी निमट लेंगे। हाँ लेकिन रब रब है, हकीम तारिक कौन है? रब रब है, अल्लाह अल्लाह है। और सच बताऊं अल्लाह वालो, अल्लाह के नाम में आज भी वही ताकत और तासीर है जो कल थी, रहती दुनिया तक, कयामत तक वो अल्लाह के नाम की तासीर रही और रहेगी, रही और रहेगी। और वो तासीर ऐसी तासीर है कि कयामत तक उस तासीर से आप निकल नहीं सकेंगे, वो तासीर है। और इस आयत में रब्बे फिर वरहम वंत खैरुर राहिमीन, और इसका मैं एक आशिकाना एक तर्जमा करता रहता हूं, वो आपको ही बता दूं। अब्बा जी नाराज थे, मैंने 40 साल अब्बा जी को नाराज किया, बहुत नाराज किया, बहुत नाराज किया, बहुत नाराज थे। तो वालिद साहब जो के पास बड़ी मुश्किल से माने, जब वालिद साहब के पास मैं गया, नाराज थे, तो मैंने कहा रब्बे गफिर वरहम, रब्बे गफिर, मौला माफ कर दे। अच्छा तुझे माफ कर दिया, वरहम। मैंने देखा ना कि अब्बा जी अब बिल्कुल रिलैक्स हो गए, मुझे माफ कर दिया। मैंने कहा अब्बा जी 100 रुपए तो दें या 10 रुपए तो दें। वो बाप जिसने कहा था ये मेरी कारोबार से आंख है, मेरा इसका कोई ताल्लुक नहीं, अखबार में डलवा दिया, इसका मेरा कोई रिश्ता नहीं, मेरे जनाजे पे ना आए, मैं इसे नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानता, खत्म खत्म। बाप को देखा ना, माफ कर दिया, एकदम कह दे अब्बा जी 100 रुपए 10 रुपए दे। उसने चुपके से निकाल, देखा ना शान मौज पे है अब्बा जी, कहने लगा अब्बा जी 1,00,000 रुपए तो दे। रब्बे गफिर, अल्लाह माफ कर दे, वरहम 100 रुपए दे, वान तखैर और राहिमीन 1,00,000 रुपए दे। ये मेरा एक आशिकाना तर्जमा है, एक आशिकाना तर्जमा है, उसकी रहमत मौजों पे, उसकी अता मौजों पे, उसकी शफकत मौजों पे। यकीन जानिए जब बंदा कहता है ना रब्बे गफिर, अल्लाह मैं एक मुहद्दिस की तफसीर पढ़ रहा था, मैं पढ़ते पढ़ते किताब बंद करके दंग होके बैठ गया। उन्होंने लिखा जब बंदा ये लफ्ज कहता है ना रब्बे गफिर, क्या माना है इसका, अल्लाह मुझे माफ कर दे। जब बंदा ये लफ्ज कहता है, सुने गौर से, मीरा बाप जमा है दर्द दिल कहले, फिर इल्तिफाते दिले दोस्तान रहे ना रहे। बड़ी मुश्किल से तो मैंने हिम्मत बांधी है कराची फिर आने की, कुछ तकरीबन 2-2.5 साल के बाद, तो पिछली दफा आया था मैंने, इस दफा के अबकरी में लिखा, उसके हाल दिल में कराची का कुदरती आया भी इसी दफा है, उसी दिन जाके मैंने लिखा था। बड़ी मुश्किल से तो हिम्मत किया कराची में, अब कराची वाले से लगता है ऊंग रहे हैं और थक गए हैं, दुआ करा दें। रब्बे गफिर वरहम लिखा है, जब बंदा रब्बे गफिर पढ़ता है ना, रब्बे गफिर, अल्लाह पाक जल्ला शानहु सारे फरिश्तों को अपनी इबादत से हटा के कहते हैं इस बंदे की तरफ मुतवज्जे हो और इस बंदे की सिफारिश में लग जाओ, तुम सारे गवाह बन जाओ, मैं इसको अता करने वाला हूं। जब बंदा रब फिर कहता है ना, अल्लाह पाक उस बंदे को अता करने वाले हैं और सब फरिश्तों को गवाह बनाते हैं जब बंदा कहता है रब फिर। और जब बंदा कहता है ना रब फिर, शैतान और जिन्नात को एक आग का गोला आता है, सुनो गौर से, एक आग का गोला आता है और वो शैतान और जिन्नात, जिसको हम लफ्ज शैतान और जिन्नात एक ही चीज है, मैं लफ्ज जिन्नात कहूंगा, जिन्नात की तरफ शैतान का एक गोला आता है और उनको जलाता है और वहीं खत्म कर देता है। और जब बंदा कहता है रब्बे गफिर, रहमत का एक बादल आता है और बंदे को ढांक लेता है। जब बंदा कहता है रब्बे गफिर, एक बारिश होती है अल्लाह की अता की, जिसमें रिस्क, जिसमें सेहत, जिसमें बरकत, जिसमें शान और शौकत, जिसमें अता, जिसमें शफकत, जिसमें महरूमियों का खात्मा, जिसमें मुश्किलात का हल, जिसमें जादू जिन्नात का खात्मा और हल, जिसमें बंदिश नजर बात बत इसका सफाया। जब बंदा कहता है ना रब्बे गफिर, ये बारिश शुरू हो जाती है। अभी तो आगे गया ही नहीं, क्यों? रब्बे गफिर कहते ही शाने करीमी इतनी मुतवज्जे होती है, इतनी मुतवज्जे होती है, इतनी मुतवज्जे होती है कि आगे अल्लाह जल्ला शानहु, क्योंकि अल्लाह को लफ्ज रहमान बहुत पसंद है। मैंने कई जादू के मारुओं को सिर्फ कहा कि 7 दफा या 11 दफा या रहमान पढ़ लो, जादू मसला हल हो जाता है। बे औलादों को मैंने कहा या हमीदो 11 दफा असर की नमाज के बाद या हर नमाज के बाद पढ़ लें, या हमीदो 7 दफा या 11 दफा और या रहमान। बे औलाद 30-30 साल के बे औलादों को अल्लाह ने औलाद दे दी, 30-30 साल के बे औलादों को अल्लाह ने औलाद दे दी, या रहमान 11 दफा या 7 दफा, या हमीदो 11 दफा या 7 दफा असर की नमाज के बाद या हर नमाज के बाद। बंदा जब रब्बे गफिर कहता है ना रब्बे गफिर, ऐसी ऊपर से कोई रहमत नाजिल होती है, ऐसी शफकत नाजिल होती है बस। और जब कहता है रब्बे गफिर वरहम, अल्लाह फरमाया 70,000 फरिश्तों का एक काफिला, 70,000 फरिश्तों का एक काफिला उस बंदे के साथ हो जाता है जिनके हाथों में कोड़े होते हैं और वो कोड़े आग के बने हुए होते हैं, और इसके करीब कोई जिन्नाती शैतानी चीज अगर आती है उस कोड़े से उसकी खबर लेते हैं। जब बंदा कहता है सिर्फ वरहम, और जब बंदा कहता है वह अंत खैरुर राहिमीन, وانت خیر الراحمین. اللہ اکبر. پھر اللہ کہتا ہے فرشتوں تم ہٹ جاؤ، ساری مخلوق تم ہٹ جاؤ، اب اکیلا میں جانوں اور میرا بندہ جانے. ہائے اللہ آ گیا. دیکھو سفارش کا کئی انداز ہے، سفارش کا کئی انداز ہے. ایک انداز یہ ہے، ایک انداز یہ ہے جی یہ میرا رکا لے جائے، ان کو کہہ دے آپ کا کام کر دیں گے، یہ میرا وزٹنگ کارڈ لے جائیں، یہ میرا پیڈ لے جائیں. اچھا ایک آخری انداز ہوتا ہے بہت قریبی، ان کو اسی وقت بیٹھ کے فون کیا، جناب یہ میرا بندہ آ رہا ہے، ان کو آتے ہی فون کر دیں، لائن نہیں لگوانا، سر ٹھیک ہے بالکل ابھی. اور ایک بندہ اور ہوتا ہے جس کو آخر میں، وہ کیا ہوتا ہے آخری، یہ ہوتا ہے اٹھو میں خود ساتھ چلتا ہوں. ہاں ہے آخر، یہ آخر ہے، اٹھو میں خود ساتھ چلتا ہوں. وانت خیر الراحمین، میرا اللہ کہتا ہے اٹھو میں خود ساتھ چلتا ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، ہٹ جاؤ فرشتو. تم مخلوق ہو، جب خالق ہوتا ہے اللہ خالق مخلوق کا محتاج نہیں ہے، مخلوق ساری خالق کی محتاج ہے، ہٹ جاؤ میں ساتھ ہوں، میں جانوں میرا بندہ جانے. جب کوئی بندہ، اب سوچو یہ تو ایک دفعہ پڑھنے سے یہ ہلچل مچی ہے، ایک دفعہ پڑھنے سے یہ کائنات میں پورا نظام میں، اور سمندروں کے سمندر ٹوٹ پڑے ہیں، ہوائیں ٹوٹ پڑی ہیں. سوچو یہ ایک دفعہ پڑھتا ہے، جب بندہ کیا پڑھتا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ایک دفعہ بندہ پڑھتا ہے ایک دفعہ، تو یہ کمالات شروع ہو جاتے ہیں. سوچیں تو صحیح، جو بندہ اس کو سارا دن میں دے 2000 3000 200 300 لاکھوں پڑھے گا، کروڑوں پڑھے گا، اس کے ساتھ پھر رحمت، مدد، طاقت، فرشتوں کی مدد، جنات شیاطین کا توڑ، اس کے ساتھ کیسا ہوگا آپ کوئی گمان کر سکتے ہیں؟ اب آپ ذرا اپنے گمان کو دوڑائیں، آپ کر سکتے ہیں گمان کوئی؟ یہ انوکھی چیز ہے، یہ انوکھی چیز ہے، یہ انوکھی چیز ہے، جس میں مغفرت بھی ہے، جس میں رحمت بھی ہے، جس کے میں معذرت بھی ہے، جس میں کیش اسی وقت کیش بھی ہے، اسی وقت مسئلہ کیش ہو جاتا ہے. جادو کے مارا ہوا، بندشوں کا مارا ہوا، نظر بد آخری ہے اور اپنی انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے، بس چپ کر کے بندہ اس کو پڑھنا شروع کر دے. کیسے پڑھے، کس طرح پڑھے، کتنا پڑھے، جتنا ضرورت ہے اتنا پڑھے. مجھ سے کوئی بندہ، ایک بندہ بیٹھا تھا دسترخوان پہ، کہنے میں کھانا کتنا کھاؤں، میں نے کہا پیٹ سے پوچھ، مجھے کیا ضرورت ہے کھانے کی، مجھے کہنے کی کتنا کھاؤں، میں نے کہا جتنی تیری بھوک ہے اتنا کھاؤ. اب آپ کی جتنی مشکل ہوگی، جتنی پریشانی ہوگی، جتنی بھوک ہوگی، اس کو دیکھیں میں نے کتنا پڑھنا ہے. وضو بے وضو ہر حالت میں بہترین پڑھنے باوضو ہے، اس کو کتنا پڑھنا ہے. یقین جانیے مجھ سے اس کے واقعے نہ سنیں آپ، اگر میں اس کے واقعے سنانے بیٹھ گیا نا تو میں ایک چھوٹا سا موتی چلتے چلتے اور بھی دینا چاہتا ہوں، پھر اس سے رہ جاؤں گا. اس کے واقعات مجھ سے نہ سنیں، میرے پاس بڑے واقعات ہیں اور آپ ہی کے ہیں، آپ سے سن کے آپ تک پہنچاتا ہوں. آپ خطوں میں لکھتے ہیں، فیس بک پہ لکھتے ہیں، نیٹ پہ لکھتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں، آپ ہی کے ہیں، آپ کے واقعات آپ تک پہنچاتا ہوں. میری زندگی کے اپنے تجربات بھی ہیں، لیکن میرے تجربات سے زیادہ اور آپ حضرات کے تجربات ہیں، کہ کتنے بے اولادوں کو اولاد ملی، کتنے غم کے ماروں کو خوشیاں ملیں. فیکٹریاں بند ہو گئی تھیں، ملیں بند ہو گئی تھیں. میرے پاس فیصل آباد کے ایک صاحب آئے، اس نے کہا جی میری 18 ملیں اور ختم ہو گیا سب کچھ. اب لاہور میں ایک کرائے کے مکان پہ بیٹھا ہوں. ایک وقت تھا میرا بنگلہ لاہور میں تھا، اور ایک وقت تھا میرا بنگلہ تین تلوار کراچی میں تھا، ایک وقت تھا کوئٹہ میں تھا، مری میں وہاں اس میں نتھیا گلی میں، اور ایک وقت تھا میرا انگلینڈ میں تھا اور فلاں جگہ میں تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ میرا کچھ نہیں بچا، لاہور میں کرائے کے مکان پہ بیٹھا ہوں. میں نے کہا کچھ پڑھ لیں گے؟ کہنے لگا آپ کہتے ہیں پڑھ لیں گے، آپ مجھے پانی کے اندر کھڑے ہو کے چلے کروائیں کروں گا، میرا تو کچھ نہیں بچا، میرا تو کچھ نہیں بچا. میں نے کہا آپ کچھ نہ پڑھیں، بس سارا دن پڑھیں رب اغفر وارحم. مولا کوئی خطا ہوئی تو تھی، تو مجھے سب کچھ تو نے چھین دیا، کوئی ہوئی ہوا تھا، یہ مجھے پتا ہے یا نہیں ہے، लेकिन हुआ था कुछ, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। रब्बे फिर से मुराद यही है कि मौला कुछ हुआ था, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मौला देख मेरी बात सुन, मैं तेरे कदमों में आके ना गिड़गिड़ा रहा हूं, मुझे पता है तू कदमों से पाक है, मुझे पता है तू पांव से पाक है, लेकिन मुझे इसके अलावा समझ नहीं आती। मैं तेरे कदमों में पड़ा हूं, सजदे में सर रख के रो रहा हूं और कह रहा हूं रब्बे फिर, रब्बे फिर, रब्बे फिर, वरहम, अब रहम कर दे। और जब तेरा रहम आता है ना, अल्लाह तू एक कतरे से कायनात को सारा अता कर देता है। जब तेरा रहम आता है, एक कतरे से कायनात को दे देता है। और जब तू कहता हूं, मैं कहता हूं वअंत खैरुर राहिमीन, और मौला फिर मेरा सब घर पूरा हो जाता है। मैंने कहा इस जज्बे से पढ़ तू। उसने पढ़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, फैसलाबाद के एक साहब, उसने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते 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 को 3-4-5 महीने के बाद मुझे मिला, तो उसकी हालत देखी, हालत बहुत अच्छी थी। मैंने कहा कैसे हुआ? कहने लगे जी एक बहुत बड़ी पार्टी आई, पता नहीं कहां से आई, मैंने तो कईयों को कह कह के, कहने लगा मैं वो शख्स था जिसको लोग आके गेट पे मिलते थे, बड़ी मिलों के मालिक, दफ्तर में जाता हूं कहते हैं साहब नहीं बैठे, कोई चाय नहीं पूछता। अब जाना छोड़ दिया मैंने, मुझे पता है जहां जाऊंगा जलील होऊंगा, रुसवा होऊंगा, मुंह मोड़ गए, मुंह मोड़ गए। कहने लगे मैंने 3 शादियां की थी, एक अपनी, 2 शौक वाली, शौक वाली दोनों शादियां छुट्टी कर गई, वही पहली है। मैंने कहा हमेशा अक्सर पहली ही गुजारा करती है, अक्सर पहली ही गुजारा करती है, हम मर्द थोड़े से बेकदरे भी हैं, यह तो मेरा तजुर्बा है, अक्सर पहली बेचारी गुजारा करती है। वो पहली है, वही साथ दे रही है, सब छूट गए। तो मैंने कहा अब क्या हुआ? कहने लगे जी एक पार्टी का फोन आया मुझे। उसने कहा क्या हाल है? खैरियत से हैं चौधरी साहब। उसने कहा आपकी सारी मिलें हैं सारी कुछ बंद हैं, कुछ प्लज हैं, कुछ बैंकों में, अच्छी चक्कर बेचारे के थे, और पता नहीं 2 कराची में भी थी, सब कुछ बंद है, आप हमारे साथ शेयर करेंगे, कैसे चलना चाहेंगे? उन्होंने कहा जैसे चलेंगे। कहने लगा फोन पे बैठे बैठे हमारी बात तय हो गई, अगले निशेष में मामला तय हो गया, सरमाया उनका, तजर्बा मेरा, मिले मेरी। और कहने लगे उनमें से 8 और एक कहने लगे नवी, वो चल भी पड़ी है, उसका बिजनेस भी शुरू हो गया है, उसकी प्रोडक्शन, उसका निजाम सारा शुरू हो गया है। कैसे हुआ, किस तरह हुआ? आनन फानन हुआ। जब देने पे आता है दरवाजे खोल देता है, जब लेने पे आता है सब बंद कर देता है। एला तो जिसको देता है उसको कोई, उससे कोई छीन नहीं सकता, अल्लाह जो जिससे छीनता है उसे कोई दे नहीं सकता। अल्लाहुम्मा ला माने, ये उस दुआ का मैंने तर्जमा किया है मफहूम के साथ, अल्लाह जो जिसको देता है उससे कोई ले नहीं सकता, और मौला जो जिसको लेता है उसे कोई दे नहीं सकता। ये जो रब्बे फिर है ना, रब्बे फिर, एक अमल मैंने बताया था, शायद आपको नहीं बताया, कि नमाज फजर के बाद 21 दफा सूरत इजाजा नसरुल्ला, नमाज जोहर के बाद 22 दफा सूरत इजाजा नसरुल्ला, नमाज असर के बाद 23 दफा सूरत इजाजा नसरुल्ला, और नमाज मगरिब के बाद 24 दफा सूरत नसर, और नमाज ईशा के बाद 25 दफा, यानी फजर से ईशा तक एक एक दफा बढ़ाते जाना है। मैंने गुर्बत और तंगदस्ती के मारोहों को आंखों से अमीर मालदार होते देखा है, एक एक सूरत बढ़ाते जाए। फजर की नमाज में कितने दफा? 21 बार फजर की नमाज के बाद, जोहर की नमाज के बाद 22 दफा, 23 के और असर की नमाज के बाद 23 दफा, और मगरिब की नमाज के बाद 24 दफा, और ईशा की नमाज के बाद 25 दफा। ये यकीन जानिए ये अमल अजीब है, इसके भी बड़े पास बेशुमार वाकयात हैं, रिज़्क के लिए और रिश्तों की बंदिश के लिए। और ये जो रब्बे फिर है ना, रब्बे फिर, कमाल की चीज है, यकीन जानिए अल्लाह के हबीब ने फरमाया। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला ने ये आयत पढ़ी एक मरीज पे, अफासिब तमन्नमा खलकनाकुम अबसन, ये आयत पढ़ी, मेरे आका मदीने वाले ने फरमाया, मफहूम है कि अगर, सुनो गौर से, अगर 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 कोई बंदा यकीन कसम उठा के, हुजूर ने यह बात कसम उठा के फरमाई कि अगर कोई बंदा यकीन से इस आयत को पढ़े तो पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए, यकीन के साथ, यकीन के साथ, बेयकीनी के साथ नहीं, यकीन के साथ। कोई बंदा अपनी जगह से हटे, मेरे पास एक मरीज आया, मैंने कहा कितने रोज खर्च कर सकते हैं, कहने लगा आप जितने कहें, मैंने कहा अपनी जेब बता, मैंने कहा सदका करवाना मैं नहीं लेना, कहने लगा 100 रुपए आसानी से कर सकता हूं, मैं कह नहीं 50 रुपए कर दो, 50 का नोट ले, उसका जिस्म का अंग अंग मरीज था, मैंने कहा पूरे बदन पे फेर और किसी मुस्तहिक को दे दे, ये अनोखा अमल है, नोट ले 10 का 50 का 20 का जो तुझे सहूलत हो, अपने बदन पे फेर और किसी फकीर को दे दे। मैंने कहा कर ये रोज कर, रोज फकीर नहीं मिलता इकट्ठे कर ले, 3-4 दिन के इकट्ठे दे दे, लेकिन रोज निकाल के एक तरफ रख, कर ऐसे। और उसने करना शुरू किया, बीमारियां छटना शुरू हुई, रोग खत्म होना शुरू हुए। एक बंदे को मैंने कहा दवाई कितने की आती है रोजाना, कहने लगी 450 रुपए की आती है, मैंने कहा 450 के आधा सदका कर रोजाना, 450 का आधा सदका कर, कुछ अरसे के बाद तेरे 500 जितना सदका करता है इतनी दवाएं शुरू हो जाएंगी, तजर्बा कर ले, इस यकीन से करना। करता रहा कुछ महीने, उसके बाद कहने लगे वाकई अब दवाएं उतनी हो गई है, मैंने अब इसका आधा सदका कर, 250 का आधा सदका कर। अब उसने 250 का आधा सदका करता रहा कुछ हफ्तों के बाद कुछ महीनों, वो कहने लगे जी अब दवाएं उतनी हो गई है, अपने अब 250 के आधे का आधा सदका कर। दीवाना बंदा हूं, दीवानी बातें करता हूं, कमी कोताही माफ कर देना, इसका सदका कर। अब उसने वो अब कहने लगे दवाएं छूट गई हैं, मैंने कहा अब उस चौथाई को ना छोड़ना, अब उसको सदका करता रहे। आपके सामने मैंने जो रिवायत पढ़ी है, उन्होंने कहा तूने इखलास से चूंकि अल्लाह के लिए गरीबों को खिलाया था, वो देख हमारी बस्तियां सामने सुबह कहर बरसाने लगे हैं अल्लाह के अमर से, अमर तो अल्लाह के चलता है ना, सुबह कहर बरसाने लगे हैं, जनाजे उठेंगे, दफन करने वाले खोदने वाले खुद मर जाएंगे और कमरों के अंदर लोगों की कब्रें बना देंगे, तू निकल जा, तू निकल जा, बच्चों को निकल, निकल जा यहां से। रब्बे फिर वरहम, मैं असल में इस आयत को छोड़ के फिर और निकल जाता हूं और कोई वजीफे बताना शुरू कर देता हूं। रब्बे फिर वरहम, इस आयत से दोस्ती लगाएं, बस मैं कहना यह चाहता हूं। एक छोटा सा इशारा करता हुआ जाऊंगा, मुझे एक बंदा कहने लगा मुझे कशफुल कबूर और कशफुल सदूर चाहिए, मैंने कहा इस आयत के अंदर है रब्बे गफिर वरहम वअंत खैरुर राहिम, इस आयत के अंदर है, जिन्नात की तस्खीर इस आयत के अंदर है और जिन्नात का दफिया इस आयत के अंदर है, जिन्नात की दोस्ती खुद इस आयत के अंदर है। कोई दीवाना आए तो सही मैदान में, कांपता है दिल तेरा अंदेशा ये तूफा से क्या, पता नहीं क्या होगा, सोचता है पता नहीं क्या होगा, कांपता है दिल तेरा अंदेशा ये तूफा से क्या, न खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहिल भी तू, न खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहिल भी तू, वाए नाकामी तू मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू मीना भी तू साकी भी तू महफिल भी तू। इस आयत से दोस्ती लगाएं, मैंने सारे आमाल बताए हैं लेकिन इस आयत से मैं लफ्ज दोस्ती कह रहा हूं, इस आयत से दोस्ती लगाएं, इस आयत से दोस्ती लगाएं और ऐसी पक्की दोस्ती लगाएं कि इसको कभी ना छोड़िए और इसको हर पल हर सांस हर लम्हा पढ़ें, पढ़ेंगे इस आयत से दोस्ती लगाएं। और अगर आप फिटनेस चाहते हैं ना, एक गिजा बताता जाता हूं, चलो एक नबवी गिजा, मैंने एक किताब लिखी है मौलजात नबवी और जदीद साइंस, उसमें से एक गिजा बताता हूं, तलबीना, तल तल बीना, एक गिजा है बहुत जबरदस्त, उस गिजा को अपने बच्चों को खिलाएं खुद खिलाएं मुझे उस दिन एक बंदे ने कहा जी कि मेरे हार्ट के वाल खोल गए। एक बंदा कहने लगा जोड़ों का पुराना मरीज था, कमर के दर्द का डिस्क का पुराना मरीज था, तलबीना खाने से मेरा मसला हल हो गया। एक खातून कहने लगी मुझे 18 की बीमारी थी, एक खातून कहने लगी मुझे कुछ और नस्वानी अवारिस थे, वो मेरे हल हो गए। मर्दों के लिए लाजवाब, ताकत के लिए लाजवाब, कुवत के लिए लाजवाब, हाफजे के लिए, नजर के लिए, कमाल की चीज है। हर मौसम, हर शख्स, हर फर्द के लिए एक अनोखी चीज है तलबीना। ये मेरे पास छपा हुआ है, आप लिखे नहीं, आपको छपा हुआ बाहर मिल जाएगा, छपा हुआ में यह है तलबीना। इसकी तरकीब बहुत, ये नबवी गिजा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अनोखी नबवी गिजा है, अनोखी नबवी गिजा। सारी साइंस इस वक्त जौ पे है। अच्छा मुझे ये चीज बताएं, जब बंदा बीमार हो जाता है जौ का दलिया खाता है, ब्राउन ब्रेड खाता है, चूकर की चीजें खाता है। और मैंने एक दफा मैं कराची में आया, मैंने कभी ब्राउन ब्रेड लाना और देखा उसके ऊपर चूकर लगी, उसके अंदर कुछ ही नहीं था। मैंने कहा इसको एक तरफ रखो, अंदर ऊपर चूकर छिड़की हुई थी ऐसे पाउडर की तरह, अंदर था ही कुछ नहीं। पता नहीं मिलती होगी मुझे तो ब्राउन ब्रेड के नाम पे, उसके अंदर रंग डाल के कलर बना देते हैं, वो ब्राउन ब्रेड होती है, चूकर लगा देते हैं। चूकर जौ, अरे जिस जौ से खा के सारे आलम को फाते किया, सारे आलम के फाते बने थे, सारे आलम को फतेह किया था, जिस जौ को खा के कायनात को मुसख्खर किया था, आज भी सारी साइंस उसी जौ की तरफ लौट रही है, आ रही है। जौ से चॉकलेट बन रहे हैं, जौ से आपकी फेस करीमें बन रही हैं बड़ी महंगी महंगी, जौ से आपके लिए फिटनेस के बड़े बड़े टॉनिक बन रहे हैं, और बार्ले और जौ से बड़े बड़े मशरूबात बन रहे हैं, और जौ से गुर्दों की बीमारियां और तकलीफें, बार्ले जौ पता नहीं क्या कुछ बन रहा है। जौ की तरफ लौट आओ। ये चलते चलते नबवी गिजा देना चाहता हूं, अपने बच्चों का आदि बनाओ। आज सुबह मैं नाश्ता कर रहा था एक घर में, तो मैंने कहा मैं अपने बच्चों को ना तरगीब देता हूं, आपसे भी अर्ज करता हूं, बच्चों को देसी सादा गिजाएं दें, सादा गिजाएं दें। बेस है बच्चे, बेस हैं और चेस हैं, ब्रैलर, बेकरी, बोतल, बर्गर, पता नहीं क्या कुछ है, और चे चावल, चीनी, चिकनाई, चटखारे, पता नहीं क्या कुछ। इससे बचें, अपनी गिजाओं को सादा बनाएं, मेरी दरखास्त है आपसे, और अपनी नस्लों को सादा गिजाओं का आदि बनाएं। कुछ मशक्कत होगी, मशक्कत होगी, क्योंकि सारा जमाना जिस लहर पे चल रहा उसमें मशक्कत होगी। यह तलबीना इसलिए लाया हूं, तलबीना खाएं, नबवी गिजा है। किसी ने पूछा रुस्तो में हिंद गामा पलवान से, अल्लाह क्या क्या जमाना था, और क्या गामा पलवान था रुस्तो में हिंद। गामे से पूछा, गामा तेरी ताकत का राज क्या है? दो चीजें उसने बताई, एक वो चीज मैं उसके लफ्जों में बताता हूं, वो आप खुद उसकी तर्जमे करते रहना, एक ये बताता हूं। कह लगा एक मेरा, मैंने अपना चौथा मजबूत रखा, और दूसरा तलबीना इस्तेमाल किया, मौस, इसका नाम है गामा पहलवान, इसका नाम है गामा। एक मैंने अपना चौथा मजबूत रखा, और दूसरा उसकी पंजाबी के वही लफ्ज, मैं टिपिकल लफ्ज बोल रहा हूं और दानिश्ता बोल रहा हूं वही लफ्ज, और दूसरा मैंने तलबीना इस्तेमाल किया, मेरा नाम गामा पहलवान है। अंग्रेजों के बड़े बड़े पहलवान, अमृतसर का एक पहलवान होता था कीकर सिंह, और कीकर सिंह इसलिए कहते थे कि वो कीकर की तरह मजबूत था, उसको जैसे कीकर को हाथ लगाओ तो बंदा कांटे करीब नहीं आते, उसको आज तक कोई नहीं गिरा सका था कीकर सिंह को। मैं तारीख का तालिब इल्म हूं, तारीख पे लिखा भी है, पढ़ता भी रहता हूं। कीकर सिंह ने चैलेंज किया गामे पहलवान को, तो गामे पहलवान ने कीकर सिंह का चैलेंज कबूल किया। हाँ, नवाब इसको देता था गिजाएं, ख्वाजा नाजमुद्दीन को गामा पहलवान ने दरखास्त दी, पाकिस्तान का गवर्नर जनरल था, कि मुझे इतने किलो गोश्त, एक मन दूध, इतनी गिजाएं, इतनी गिजाएं, होने का हमारा बजट कबूल नहीं करता, मुझे गिजा चाहिए। गामा पहलवान गिजाएं खाता था। 3.25 किलो मक्खन रोजाना खाता था,
हां
37 किलो गोश्त छोटा खाता था, और दूध पूछे ना, बादाम कितने किलो रोज, और क्या ये गमा पहलवान था। लेकिन वो सारी गिजाएं नहीं बयान कर रहा, मैं आपको जो बात करना चाह रहा हूं, वो कहता है मेरी ताकत का राज दो चीजें हैं, एक वो और एक तलबीना। तलबीना, मैंने तलबीना इस्तेमाल किया। ये तलबीना आज मैं आपको दे रहा हूं, कोलेस्ट्रॉल का भी हाल है, यूरिया का भी हाल है, यूरिक एसिड का भी हाल है, ब्लड प्रेशर का भी हाल है, शुगर का भी हाल है, और सारे के सारे जो क्लिनिकल टेस्ट हैं इन सब का हल है, और आपकी बीमारी का तलबीना तरीका लिखा हुआ है, और एक जमजम के घूंट तमाम बीमारियों का हल। ये अमल भी आप सबको इजाजत है, मैंने इस कागज में लिखी हुई है, ये भी जरूर कीजिएगा यकीन के साथ। और चंद लफ्ज आखिरी चलते चलते, एक बात याद रखिएगा, जिसको मिला है यकीन की दुनिया से मिला है, जिसने भी खोया है बेयकीनी से खोया है। अगर आपने पाना है, और बहुत कुछ पाना है, और ऐसा पाना है कि आप सबसे ज्यादा बेहतरीन इंसान हो और आपके मसाइल और मुश्किलात हल हों, फिर मैं आपसे एक दरखास्त करूंगा, अपने यकीन को मजबूत करें। यकीन, ऐसा ताकतवर यकीन हो कि जो बस, हमारी अम्मा रहमतुल्लाह के पास, मेरी अम्मा रहमतुल्लाह के पास एक माई आती थी, घरों में बच्चों को पढ़ाती थी ये कुरान पाक। उसके पास कोई एक लफ्ज ऐसा था कि वो जब भी पढ़ती थी ना, काम हो जाता था। बहुत माइयां उसके पीछे होती थी, उसको सूट देती थी, ईदी पैसे। मेरे अंदर तहकीक थी, मैंने कहा या अल्लाह कुछ है सही मामला इस माई के पास। मैं माई की खिदमत करता हूं करता, एक दफा कहने लगी, हंस के कहने लगे, मुझे पता है तू मुझसे अमल लेना चाहता है तेरे पास क्या। मुझे कहने लगी, मैं छोटा सा था, मुझे कहने लगी, माई बूढ़ी थी, अब पता नहीं कहां फौत हो गई, वल्लाहु आलम, ये आज से कोई 30 साल पहले की बात, 35 साल कमोबेश। मुझे कहने लगी, मेरे पास ये अमल है लेकिन तुझे फायदा नहीं देगा। मैंने कहा आप इजाजत दे दें तो फायदा होगा। कहने लगा, मैं इजाजत दे रही हूं तब भी तुझे फायदा नहीं होगा। मैं उस माई के चैलेंज पे हैरान हुआ, क्यों? कहने लगे, फायदा इसलिए नहीं देगा कि जो मेरा यकीन है वो तेरा नहीं है। मैंने कहा, वो कौन सा यकीन चाहिए? कहने लगा, कौन फाया कौन वाला यकीन चाहिए। मैंने कहा, वो क्या होता है? कहने लगा, मैं अनपढ़ हूं, मेरा अब्बा आमिल था, मेरे अब्बे ने मुझे दिया था, और मेरा अब्बा कहता था कुन फयाकून का यकीन ये है। वो सुने, उस मई ने मुझे कुन फयाकून का यकीन बताया, बिल्कुल अनपढ़ मई, कुरान पाक जानती थी, दुनिया के उलूम से अनपढ़ थी। कुरान पाक खुद एक बहुत बड़ा इल्म है, इस मई को अनपढ़ नहीं कह सकता, लेकिन दुनिया के उलूम के बारे में अर्ज कर रहा हूं, जिसके पास कुरान का इल्म है वो अनपढ़ कैसे हो सकता है, कुरान सबसे बड़ा इल्म है। तो मुझे कहने लगी, कौन फाय कौन का इल्म कैसे? ये मैं सारे वजीफों का राज बता रहा हूं, जरा मेरी ये बातें गौर से सुनिएगा। मैं अपनी सारी तस्बीहात के कुछ मैं चाबियां दे रहा हूं आपको, मास्टर की दे रहा हूं, मेरी बात गौर से सुनिएगा। लेकिन कौन फाया कौन? मैंने कहा, कौन फाया कौन को तो सिफत अल्लाह की है, बंदे के तो नहीं हो सकती। कहने लगा, हो सकती है। मैंने कहा, कैसे? कहने लगा, दिल में ख्याल कर, मैं खलीफतन फिल अर्ज़ हूं। बंदा इंसान कौन है? खलीफतन फिल अर्ज़ है ना, कि अल्लाह जमीन में अल्लाह का खलीफा हूं, और मैं जो कह रहा हूं वो अल्लाह कर रहा है, बस खत्म। हाय हाय, इन लफ्जों में बड़ी ताकत है। जो मैं कह रहा हूं वो कौन कर रहा है? वो कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है, बस। और अल्लाह ने कर दिया और हो गया, बस खत्म। ये यकीन हो, ये मैं फिर दोहरा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। मैं खलीफतन फिल अर्ज़ हूं, जमीन में अल्लाह का खलीफा हूं, अल्लाह ने मुझे इंसान को खलीफा बनाया है, अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। मैं खलीफतन फिल अर्ज़ हूं, जो मैं कह रहा हूं मेरा अल्लाह कर रहा है, और मेरे अल्लाह ने जो कर दिया वो हो गया। कोई है इसमें शिर्क? तो शिर्क तो नहीं है। क्या क्या तसव्वुर है और क्या गुमान है। और मुझे बड़े अरसे के बाद इस खातून की अभी ना बांटे भाई, फेर जाए भाई, इनको रोक दें। मुझे बड़े अरसे के बाद यह बात खुली, और वो क्या खुली, वो ये खुली बड़े अरसे के बाद कि मेरे बंदे, हदीस कुदसी है, तो मेरे बारे में जैसे गुमान करेगा मैं तेरे साथ वैसे मामला करूं। है हदीस कुदसी, मफहूम अर्ज किया, तो मेरे बारे में जैसे गुमान करेगा मैं तेरे साथ वैसा मामला करूंगा। तो यकीन के साथ पढ़ें, एतमाद के साथ पढ़ें, और ऐसा यकीन हो, और अगर फिर भी नहीं मिल रहा, मेरे यकीन में कमी, मेरे रब के देने में कमी नहीं। और एक बात और भी बता दो, बाज़ औक़ात शैतान बड़ा खबीस है, वो मुख्तलिफ अंदाज से लूटता है। वो कहता है तू गुनागार है, तेरी नहीं सुनते, छोड़, न जा मस्जिद, न कर सजदे, वजू के तोड़ दे कूजे। नो, एक अल्लाह वाले थे, हज पे जाते थे, हर कदम पे लब्बैक कहते थे और हर कदम पे ला लब्बैक आती थी। एक जवान साथ था, कहने लगा बाबा जी हर कदम पे आप लब्बैक कहते हैं, ऊपर से ला लब्बैक, जा तेरा कुछ कबूल नहीं, फिर भी लब्बैक कहते हैं। कहने लगा बेटा कोई और दर है जहां के जाके लब्बैक कहूं, मैं लब्बैक कहता रहूंगा। एक वक्त आएगा मेरा रब भी कह देगा मेरे बंदे तेरी लब्बैक कबूल है, मुझे कोई और दर नजर नहीं आता। बस ये कहना था, अर्श इलाही रहमत जोश में आई, फरमाया कि मेरे बंदे तेरी ये लब्बैक भी कबूल है, तेरी पिछली सारी कबूल है, और कोई डर है ही नहीं ना। मायूस नहीं होना, ये शैतान का चक्कर है, और बाजों का चक्कर देता है, क्या पढ़ लिया, तस्मे वजीफे कर लिए, क्या हुआ, लोगों से कहलवाएगा, खुद दिल में गुमान आएगा, खुद दिल में ख्याल आएगा, क्या कर लिया, कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, मेरे करने में कमी, करीम के देने में कमी नहीं। और बाज़ औक़ात मेरा बंदा जो है ना, मेरा अल्लाह बंदे को रुला के खुश होता है। जैसे मैंने खुद अपनी बीवी से नहीं कहा, मैंने कहा ठहर जाए, इसको रोने दे जरा, मेरा अल्लाह के भी कहता है मेरे बंदे को जरा रोने दो फरिश्तो, ये मुझे रोता बहुत अच्छा लगता है, इसके रोने में जो मैं इसे दूंगा, इसके मांगने में वो ये पा नहीं सकता। सुनो ये बात फिर सुनो, अल्लाह वालो, जो इसको रोने में मैं दूंगा, ये मांगने में वो पा नहीं सकता, इस मेरे बंदे को रोने दो, इसको रोने दो। तो अल्लाह वालो, कभी मायूस ना होना, मांगते रहना, गिड़गिड़ाते रहे, एक वक्त आएगा शाने करीमी अपनी रहमत का पूरा बादल और रहमतें भेज देगी। दुआएं कबूल होती हैं, मंजिलें मिलती हैं, हासिल होती हैं, बस कोई मेरे मांगने में शायद कमी आ जाती है। कभी मायूस ना होइएगा, 70 ठोकरें खा के फिर भी उस दर के दरवाजे, उस रब के दर को छाने, क्यों, दर है ही वही। ला मलजा वला मंजा मिन अल्लाह इल्ला इलैह, जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ, जो ला हुआ कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ, अल्लाह हुआ, अल्लाह ही अल्लाह है, उसके अलावा है ही कोई नहीं। कभी मायूस ना हुआ करें। देखो बात सुनो, सारी दुनिया के असबाब नाकाम हो चुके हैं, अल्लाह दिखा रहा है, सारी दुनिया के असबाब नाकाम हो चुके हैं। आज तक कराची में पुराने रहने वालों मुझे बताओ, इतनी अस्पतालें कभी पहले देखी जो अब हैं, इतने डॉक्टर, इतनी दवाएं, इतनी तिब्बी सहूलतें, इतनी लेटेस्ट मशीनें और दवाएं। अच्छा, अब अगला सवाल का जवाब दो, कराची वालों एक चीज बताओ, आज तक इतने मरीज भी कभी देखे थे? असबाब नाकाम हो के ऐलान कर रहे हैं, हम नाकाम हो चुके हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी में जिसपे बम और गोली असर न करे, हुक्मरान या मालदार बंदा बैठा फिर भी तस्बीह लेके या कोई लफ्ज पढ़ रहा है। मुझे एक साबिक हुक्मरान मेरे पास थोड़ा सा पहले बैठे थे, कहने लगे कि आपकी आयत काम आ गई मुझे। कहने लगे हर तरफ से मॉनिटर किया गया, हर तरफ से हिसार किया गया। मेरा जलसा था, ये जो गुज़िश्ता इलेक्शन हुए थे, अभी साल तकरीबन कम बेश पता नहीं कितना, कहने मेरा जलसा था हर किस्म की, मैं ऐसे उठा हूं पांच मिनट के बाद धमाका हो गया है, मैंने लकद जाकुम रसूलुन वाली आयत पढ़ी हुई थी, सूरत तौबा की आखिरी आयत 11 दफा पढ़ी हुई थी। कहने लगा एक वाक्य हुआ, मैं जा रहा था और आपने मुझे ये आयत बताई थी, मैंने ये आयत पढ़ी हुई थी, आगे टैंकर जा रहा था कौन सा पेट्रोल का भरा हुआ, एकदम वो फटा तो क्या आग होगी, सोचो तो सही, कोई आग का तूफान होगा या समंदर होगा, अल्लाहु अकबर, ऑयल टैंकर फटा अचानक और फटा और बिल्कुल आग लग गई, मेरी गाड़ी एन पीछे थी। कहने लगा किसी, कहने लगे मेरी गाड़ी मोमबत्ती की मोम की तरह पिघल गई, कौन सी ताकत थी कौन सी कुव्वत थी मुझे कोई खबर नहीं, मैं फुटपाथ पे खड़ा हुआ था और हमारी गाड़ी में से कोई बंदा नहीं और गाड़ी पिघल गई ऐसे। सारी दुनिया के असबाब बता रहे हैं कि नाकाम हो चुकी हैं, हिफाजतों के सिक्योरिटियों के सारे निजाम नाकाम हो चुके हैं, आमाल की दुनिया वाहिद है जहां कामयाबी मिलेगी, वह हिफाजत की दुआएं वह हिफाजत वाले आमाल हैं, वहां नाकामी का निजाम सारा खत्म हो जाएगा। इन हिफाजत वाली दुआएं मसनून आमाल इनका तहफ्फुज लें और आप सारे घर से निकलते हुए या हफीज और या सलाम 11 दफा जरूर पढ़ा करें, गाड़ी में बैठते हुए, कोच में बस में बैठते हुए, दफ्तर में जाते हुए कहीं या हफीज और या सलाम जरूर पढ़ा करें। यह हिफाजत का अनोखा राज भी है, अनोखा निजाम भी है। अल्लाह हमारे लफ्जों और बोलों को कबूल फरमाए, अल्लाह मेरे लहजे और लफ्जों की गलतियां माफ फरमाए। सुना है कि कराची बड़े मेहमान नवाजों का शहर है, गरीब की मां है, जो भी पंजाब का पूरी दुनिया का बेचारा मुझ जैसा मुफलिस गरीब हो जाता है ना, कराची में आता, कराची उसको संभाल लेता है, कराची वाले मेहमान नवाज हैं, तो मेहमान नवाज को मुझे मुसाफा ही करना है ना, सलाम करना है, मैं आपको एक दफा फिर सलाम करता हूं, अस्सलाम वालेकुम, सलाम हो गया। अब मेरी दरखास्त यह है, मुझे दुआ के बाद ऐसे जाने देंगे, आपकी शफकत होगी, थका हुआ मुसाफिर परदेशी हूं, फिर सफर में जाना, फिर कल की अपॉइंटमेंट मरीजों की, फिर काम, आपसे दरखास्त है, इन सारे वजायफ की आप सबको इजाजत है, आप जिसको बताएं उसकी भी इजाजत है, इन सब वजायफ की आपको इजाजत है, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आइंदा फिर भी मैं वक्त आपकी खिदमत में पेश करूं। ये कहते हैं वादा करके जाए ताकि ये फंस जाए ना, रमजान से पहले नहीं, रमजान के बाद इंशाल्लाह, रमजान से पहले बैत। अच्छा जी देखें, ये हजरात बैत कह रहे हैं, बैत होने वाले हजरात वहीं बैठे बैठे बैत हो जाएंगे, मैं बैत के कलिमात पढ़ा देता हूं, जो हजरात बैत होना चाहें, बहने भी भाई भी जरा तवज्जो से सुनिएगा, खामोशी से, जो बहने भाई बैत होना चाहते हैं वो बैत के कालिमात में पढ़ा दूंगा, वो उसको पढ़ लेंगे वो बैत हो जाएंगे, और बैत का कार्ड जवाबी लिफाफा भेज के लाहौर से मंगवा लेंगे। पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا الله میں نے توبہ کی شرک سے بدعت سے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے تیری ہر نافرمانی سے عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما دعا مانگے اللہ من یسألک بأن لک الحمد لا إله إلا أنت الحنان والمنان بدی السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا کرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام تیرے نام کی برکت سے مولا سب کچھ ہوگا، यहां बच्चे भी बैठे हैं, परदेशी भी बैठे हैं, और बूढ़े भी बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं। तू तो सफेद बालों का बड़ा ख्याल रखता है। कैसे तौबा करने वाले जवान मौला ऐसे हैं कि जिनकी तौबा पे तूने कितने फैसले कर दिए अल्लाह। आज पूरी उम्मत के फैसले फरमा, सारी इंसानियत के फैसले फरमा, सारे आलम के फैसले फरमा। अल्लाह हमारे हाल पे फजल का करम का मामला फरमा। सारे मोहताज बैठे हैं मौला, अपने हाथों को प्याला बना के बैठे हैं। जब प्याले पे नजर डालते हैं तो काले ही काले हाथ हैं। जिसने मौला तुझे नाराज किया, पल पल पे तुझे नाराज किया, लेकिन क्या करें, फिर लौट के तेरे पास आए। हमारे बहुत करीब समंदर है। हम समंदरों की मिसालें देते हैं कि बड़ा गहरा होता है, बड़ा वसी होता है, लेकिन मौला तेरे सामने तो समंदर की कोई हैसियत नहीं। तेरी रहमत इतनी ज्यादा है, ऐसे 70,000 समंदर उसमें आ जाए तो कुछ भी नहीं। तो अपनी रहमत का समंदर का एक कतरा आज इस मजमे में भेज दे, और एक कतरा पूरे आलम के लिए भेज दे, और एक कतरा सारी इंसानियत के लिए भेज दे। ए मेरा अल्लाह, हमारे हालत पे तरस का और हमारे हाल पे रहम फरमा। अल्लाह तेरी रहमत आएगी तो काम बन जाएगा, तेरा फजल आएगा तो काम बन जाएगा। हमारी सारी तदबीरें नाकाम, हमारी सारे हीले नाकाम, हमारे सारे अंदाज नाकाम। मौला तेरे करने से होगा, तेरे चाहने से होगा। अपने नाम की बरकतें आफियतें अता फरमा, दुनिया आखरत की जिल्लतों से बचा, दुनिया आखरत की बरकतें अता फरमा। अल्लाह हमारे दिल की दुनिया को अपनी मोहब्बत के लिए कबूल फरमा, अपने कमली वाले की मोहब्बत और मार्फत के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे मन की दुनिया बदल दे, दिल की दुनिया बदल दे, सोचों की दुनिया बदल दे, हमारी समझ की दुनिया बदल दे। मौला हमें बदल दे, हमारा मन चाहे ना चाहे बदल दे, हमारा दिल चाहे ना चाहे बदल दे। तू बड़ा करीम है अल्लाह, तू बड़ा करीम है। हमारे मुआशरे को बदल दे अल्लाह, हमारे ऐवानों पे अपना फजल फरमा, हमारी छावनियों पे अपना फजल फरमा, कचहरियों पे अपना फजल फरमा, हमारे बाजारों घरों पे अपना फजल फरमा, हमारे हर फर्द और दर पे अपना फजल फरमा, अपनी रहमत फरमा, हमारे हुक्मरानों पे रहमत फरमा, महकूमों पे रहमत फरमा, अल्लाह गरीबों पे रहमत फरमा, अमीरों पे रहमत फरमा, औरतों मर्दों पे अपनी रहमत फरमा। जब जन्नत तेरी रहमत से मिलेगी मौला, तो हमारी दुनिया के काम तेरी रहमत के बगैर कैसे हो सकते हैं। अल्लाह तू राजी हो जाएगा, हमारे काम बन जाएंगे। अल्लाह बेघरों को घर दे दे, बेदरों को दर दे दे। कितने ऐसे हैं जो सारी जिंदगी कहते हैं कि मौला हमारा भी घर होगा, जब तू देने पे आता है पल नहीं लगता। मौला कितने बे औलाद ऐसे हैं जो दूसरों के बच्चों को देखते हैं तो उनकी माँ के अंदर की हाय निकलती। तू बड़ा बेनियाज है। एक वो है जिससे संभाले नहीं जाते, एक वो है जो एक एक को तरसता। बेनियाज, तुझसे कौन पूछ सकता है, तू ताकतवर है। बे औलादों को औलाद दे दे, बे घरों को घर दे दे, बे दरों को दर दे दे, बे सहारों को सहारा दे दे। ए मेरा अल्लाह, तू हमसे राजी हो जा, ऐसा राजी हो कभी नाराज ना हो। अपनी मोहब्बत का जाम पिला दे मरने से पहले पहले, इन लफ्जों को इखलास दे दे, रियाकारी से बचा दे। हमारे आंसुओं को भी इखलास दे दे, हमारी बोलों को भी इखलास दे दे, हमारी चाल ढाल को भी इखलास दे दे, हमारे हर्फ हर्फ को इखलास दे दे, हमारी गलतियों पे पर्दे डाल दे। क़यामत के दिन फरिश्तों के सामने रुसवा न कर, दुनिया में रुसवाई से बचा, आखरत की रुसवाई से बचा। अल्लाह जितने भी आमीन कहने वाले हैं सब की आमीन को कबूल कर ले, किसी की आमीन मुंह पे ना मार दे मौला, मुंह पे ना मार दे, मुंह पे ना मार दे मौला। एक हमारे साथ और करम फरमा दे। सारी जिंदगी तो हम कलमा पढ़ने वालों के साथ हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई बोल निकल जाए, हमारा खात्मा खत्म हो जाए, जनाजा रख के हमारी नमाजें जनाजा पढ़ रहे हो और हम तो काफिर हो चुके हों, कोई ऐसा बोल कोई ऐसी गलती हमारा ईमान खत्म हो जाए। अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पे कर दे, हमारा खात्मा ईमान पे कर दे, हमारा खात्मा ईमान पे कर दे। ईमान की दुनिया दे दे, ईमान की रातें दे दे, ईमान की सुबह शामें दे दे, ईमान वाली मौत ईमान वाली कब्र दे दे। अल्लाह गरीबों की गुरबत दूर कर दे, फकीरों के फाकर दूर कर दे, मरीजों का मर्ज दूर कर दे। اے اللہ دکھیاروں کے دکھ دور کر دے. بڑی دور سے بہنیں اور بھائی آئے ہیں اللہ, کوئی پیاسا بیٹھا ہوگا, کسی کو پیشاب آیا ہوگا, کسی کے گھٹنے درد کر رہے ہوں گے, مولا تیرے سامنے مانگتے ہیں کسی ایک کے دکھ کے صدقے ہمارے دکھ ٹال دے, ساتھ پوری امت کے دکھ ٹال دے, ہمارے وطن کے دکھ ٹال دے. اللہ اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما, اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما, ہمارے حال پہ فضل اور کرم کے دروازے کھول دے. بن مانگے عطا فرما, بن مانگے عطا فرما, بن مانگے عطا فرما. آمین آمین آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم, وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین. آمین. میرا کون سا مہینہ ہو جائے آئندہ کے لیے مشورہ دے دیجیے. رمضان کے بعد مشورہ کر کے بتا دیجیے. سبحان اللہ بحمد.
دوبارہ کہہ دیتا ہوں.